سلام خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو دا 400th ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگس. ہمارے فورتھ سیزن کی آخری ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید. سب سے پہلے آج کے ایپیسوڈ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس میں اور کوئی گیسٹ نہیں ہے، اس میں میں ہی ہوں، میں ہی ہوسٹ ہوں، میں ہی گیسٹ ہوں، میں ہی اپنے خیرات کا اظہار کر رہا ہوں. اور یہی ایپیسوڈ جو ہے وہ ایکچولی ایون دو ہمارا یہ والا سیزن ختم ہو گیا ہے اور کچھ عرصے بعد ہمارا سیزن 5 اسٹارٹ ہوگا، بٹ یہ ایک ٹرانزیشن ایپیسوڈ ہے بیکاز یہ سیزن 4 کو ختم کر رہی ہے اور یہ ایک نئے شو کو یا ایک نئی چیز کو اسٹارٹ کر رہی ہے جس کا نام ہے دل کی بات. جیسے کہ نام میں واضح ہے کہ وہ میرے دل کی باتیں ہیں، جو کہ ایز اے ہوسٹ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک پوڈ کاسٹ کا ہوسٹ کرنا. لوگوں کو لگتا ہے بڑا آسان کام ہے، دو کیمرے لگاؤ باتیں کرو کتنا ہی مشکل ہے، بٹ ہوسٹ کا رول بڑا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ جو آپ کا ویور ہے نا اس کی ایکسپیکٹیشن آپ سے بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. دنیا بھر میں پوڈ کاسٹ جیسے ایوالو کی ہیں، دیو بیکم اے کانورزیشن، اینڈ سو جو آپ کے خیالات ہیں وہ کافی حد تک آپ بھی آگے لے کر آ سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں اسٹل دیر از دس کانسیپٹ ویئر اے پوڈ کاسٹ از این انٹرویو، جہاں پر آپ گیسٹ کے ساتھ جب بیٹھ رہے ہیں تو بس آپ نے ایک ویری سمرائزڈ قسم کا ایک سوال رکھا ہوا ہے آپ نے اور وہ آپ نے دیا اور پھر وہ جو ہے نا گیسٹ نے اس پہ رسپونڈ کرنا ہے، جس کی وجہ سے جو میرے خیالات ہیں یا ہوسٹ کے خیالات ہیں وہ مور آفن دین ناٹ وہ آپ نہیں شیئر کر سکتے اپنی آڈینس کے ساتھ. اور اگر آپ کبھی کریں بھی تو ایک تو وہ ظاہر ہے کہ گیسٹ کی کانورزیشن کے درمیان وہ تھوڑا سا آپ نے کوئکلی اپنی تھاٹ دے دی، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی ہو جاتی ہے کافی دفعہ جو ہے وہ لوگوں کو انوائے بھی کرتی ہے. بہت کامنٹس آتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں اتنا بول رہے ہیں، گیسٹ کو بولنے دیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. سو آئی تھاٹ کہ یو نو اٹ وڈ بی اے گڈ آئیڈیا کہ آج ہماری کیونکہ ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے اس میں میں آ کے آپ لوگوں کو کچھ اپنی تھاٹس شیئر کر سکوں اور آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے ود دا پوڈ کاسٹ، ود دا شو، ود دا فارمیٹنگ، وہ بھی آپ کو سارا کچھ بتاؤں. اچھا جی، میں نے کچھ نوٹس یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں تو آئی ایم گوئنگ ٹو یوز دوز نوٹس اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا. پہلے میں تھوڑا سا سمری دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں آئی ہیو اسپوکن ٹو اوور 400 گیسٹس اکراس ملٹیپل پلیٹفارم. سو ٹی بی ٹی کے اندر آلموسٹ 400 ایپیسوڈ میں سے کچھ لوگ ریکرنگ رہے ہیں تو تقریباً سمجھ لیں 380 گیسٹس آن ٹی بی ٹی. اینڈ دین آئی ڈیڈ دا پاکستان پیوٹ پوڈ کاسٹ جس میں رفلی اراؤنڈ 25-30 اس میں تھے. دین آئی ڈیڈ دی ان باکسنگ پاکستان پوڈ کاسٹ ان 2019. سو فور دا لاسٹ 4 ایئرز آئی ہیو اسپوکن ٹو اوور 400 ڈفرنٹ گیسٹس سنس سپٹمبر 2020. اچھا اسٹارٹ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ 2020 کی بات ہے. ایز سچ پوڈ کاسٹنگ واز ناٹ اے تھنگ ایٹ دا ٹائم. 200 ویوز آ رہے تھے اس میں، جو اسٹینڈرڈ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں نا، پیسہ، پاور اور پاپولیرٹی کوئی بھی نہیں تھی اس میں، پیسہ تو بالکل ہی نہیں تھا. نو بڈی نیو کہ یار ایک چیز ہے اور اس میں یو نو کوئی مارکیٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی ہو سکتا ہے. ویوز آپ کو 200 ملتے تھے تو ایڈ سینس کا بھی پیسہ نہیں بنتا تھا. پھر یہ کہ آپ کا پاپولیرٹی، ورائلٹی، اگر آپ کو پاپولیرٹی چاہیے تو آپ ٹک ٹاک پہ جائیں یا آپ انسٹاگرام پہ ریلس بنا لیں، اس سے آپ پاپولر نہیں ہوں گے ایٹ دا ویری لیسٹ. اور پاور کا بھی یہ ایلیمنٹ تھا کہ دوست یار جو ارد گرد ہیں، جو آلریڈی آپ کو جانتے ہیں، آپ ان کو پوڈ کاسٹ پہ لے کر آ رہے ہو، رائٹ؟ سو اٹس ناٹ لائک یو نو اب تو اٹس بیکم اے تھنگ. بڑے بڑے لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمیں پوڈ کاسٹ پہ لے کر آؤ، تو آپ کی ایک یو کین آرگیو کہ اس کے تحت آپ نیٹ ورکنگ کر لیتے ہیں یا آپ کا کنٹرول ہو جاتا ہے، یا ویورشپ چونکہ بڑھ گئی ہے تو لوگ اب آپ کی بات سننا شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو ایک پاور ملی ہے. اس ٹائم پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس ٹائم پہ بس یہ چیز تھی، میں نے یو نو وین آئی اسٹارٹڈ کہ یار دیر از اے وائڈ ان دا مارکیٹ ویئر ہائی کوالٹی انرچڈ کانورزیشنز، ایسی کانورزیشنز جو کہ ایک بہت تھوڑے ببل میں ہو رہی ہیں، وہ کانورزیشنز پبلک ہونی چاہیے تاکہ پبلک ایٹ لارج آج بھی دیکھ سکے اور آرکائیو بھی ہو سکیں کہ آج سے 30-40 سال بعد لوگ مڑ کے دیکھ سکیں کہ اچھا اس ٹائم کے جو تھاٹ لیڈرس تھے، اس ٹائم کے جو لوگ تھے وہ کیا سوچ رہے تھے. اینڈ سو دیٹس ویئر آئی اسٹارٹڈ اسینچلی. اچھا اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے یہ چیز اسٹارٹ میں واضح کرنا کہ آئی واز ناٹ دا فرسٹ ون ٹو ڈو اٹ. یو نو جنید بھائی پرابلی از دا فرسٹ ون. اگر میں پیورلی فرسٹ پہ جاؤں تو اس پہ آڈیو کے اوپر دیر آر بنچ آف پیپل ہو ہیو بن ڈوئنگ دس سنس 2013-14-15 یو نو ان ڈفرنٹ شیپس اینڈ فارمز اینڈ سائزز. میں نے خود آڈیو کی ایک 2016 میں پوڈ کاسٹ کی تھی اپنے ایک دوست کے ساتھ، بٹ مین اسٹریم کے اندر، ویڈیو کے اندر یو نو جنید بھائی واز ڈوئنگ اٹ فار کوائٹ اے وائل بفور آئی واز. مورو واز ڈوئنگ اٹ. دیر آر ایٹ لیسٹ آئی ووڈ سے 5-6 ڈفرنٹ پوڈ کاسٹ جو کہ اسپوریڈیکلی ہو رہی تھیں. ڈفرنس یہ تھا کہ وہ پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ لارجلی انسٹرکچرڈ طریقے سے ہو رہی تھیں، رائٹ؟ سو دیز وار جنرلی کانٹینٹ کریٹرز جن کے پاس اکوپمنٹ تھی اینڈ اگین ایکسیس ٹو گڈ کانورزیشنس تھیں. تو جب ان کے پاس کوئی انٹرسٹنگ بندہ آتا تھا وہ اس کو بٹھاتے تھے، وہ بیٹھ کے کانورزیشن ریکارڈ کرتے تھے اور وہ رینڈملی وہ اپلوڈ ہو جاتی تھی. جو ڈفرنس ہم لے کر آئے تھے نا وہ یہ لے کر آئے تھے کہ جس کو میں کہتا ہوں میکڈونلائزیشن آف پوڈ کاسٹ، رائٹ؟ سو دی آئیڈیا واز کہ जिस तरह एक मैकडॉनल्ड होता है ना, आपने हर चीज़ को ब्रेक डाउन कर दिया और कोई भी बंदा उसमें घुस जाए तो उस प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है। तो हमने पॉडकास्ट का भी यही किया था, हमने टीम्स बनाई, हमने प्रोडक्शन को सेपरेट आउट किया, होस्टिंग के पहले स्टेप्स ब्रेक डाउन किए, फिर प्रोडक्शन के स्टेप्स ब्रेक डाउन किए, जो डिस्क्रिप्शन टाइटल्स उन सारी चीज़ों के ब्रेक डाउन किए, और हमने एक पूरी टीम बनाई। और उसमें होता ये था कि यार अगर मैं फोकस कर रहा हूँ होस्टिंग के ऊपर या उस चीज़ के ऊपर जो कोर मेरा काम है, तो मैं सिर्फ उस पर फोकस करता था। गेस्ट कोऑर्डिनेशन के लिए एक सेपरेट रोल था, गेस्ट कोऑर्डिनेटर का काम था कि गेस्ट को फिगर आउट करना कौन हो सकता है, उसको लेकर आना और उसके बारे में रिसर्च करना, फिर वो रिसर्च मैं लेता था, मैं उसके बाद फर्दर रिसर्च करता था, मैं अपना काम पूरा करता था, फिर मैं वो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लेता था, जब वो रिकॉर्ड हो जाती थी तो वो प्रोडक्शन में जाती थी, प्रोडक्शन में जो है वो टीम उसको एडिट करके अपलोड रेडी करती थी, और फिर वो जाके एक और टीम को ऑडियो देती थी जिसको वो सुनकर डिस्क्रिप्शन चैप्टर्स ये सारा कुछ बनाते थे। अच्छा, ये इससे पहले टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये वाला पार्ट कभी भी नहीं हुआ था कि चैप्टर्स बन रहे हों, डिस्क्रिप्शंस बन रही हों, और एक शो की तरह मंडे वेंसडे फ्राइडे एक डेडिकेटेड टाइम के ऊपर पॉडकास्ट अपलोड हो रही हूँ। सो आई थिंक दैट वॉज वन यूनिक फ्लेवर दैट वी एडेड एंड वी रियली मेड दिस अ शो कि यार ये एक रियल चीज़ है और यही चीज़ है, और जो ये कर रहा है वो और कुछ नहीं कर रहा, दिस इज़ हिज कोर, और आप उस पर चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस पर थॉट ये थी कि तीन एपिसोड्स एक हफ्ते में करने का मकसद ये था कि उस टाइम के ऊपर मार्केट लार्जली इस फॉर्मूला पे चलती थी कि यार मैं जो भी कंटेंट बना रहा हूँ ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, वो सब देख सकें। द थॉट वाज कि यार मेरा कोई अगर कोई इफ समवन लाइक्स मी तो उसको मेरा हर कंटेंट देखना चाहिए। मेरी थॉट थोड़ी डिफरेंट थी, मैंने इसको एज अ कैटलॉग सोचा था कि यार मेरे पास लेट से 500,000 एपिसोड्स होंगी, 1500 एपिसोड्स एक्चुअली मैंने सोची थी कि मैं ओरिजिनली 3 एपिसोड्स अ वीक करूँगा, 52 वीक्स में मैं 150 एपिसोड्स करूँगा, और 10 साल मैं इसको करूँगा तो 1500 एपिसोड्स मेरी टोटल होंगी। थॉट वाज कि वो 1500 एपिसोड्स एक नेटफ्लिक्स की तरह, एक कैटलॉग की तरह होंगी जिसमें हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ होगा। इट्स नॉट लाइक कि वो तमाम एपिसोड्स तमाम लोगों के लिए होंगी, बट तमाम लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। सो अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको 30-40 गेमिंग की कॉन्वर्जेशन मिलेंगी, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको 30-40 स्पोर्ट्स की कॉन्वर्जेशन मिलेंगी, अगर आपको CSS में इंटरेस्ट है तो आपको CSS रिलेटेड कॉन्वर्जेशन मिलेंगी। और जो वेराइटी थी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कि जो डाइवर्सिटी एंड वेराइटी जो थी वो एक बहुत कोर पार्ट ऑफ द DNA था, जिसका मकसद ये था कि यार हर किस्म के इंसान के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हो। तो वो हमने स्टार्ट में वो वाली अप्रोच ली, एंड विच इज़ वाई इन द स्टार्ट आई वॉज स्पीकिंग टू कॉन्टेंट क्रिएटर्स एंड ब्यूरोक्रैट्स एंड पॉलिटिशियंस एंड डिवेलपमेंट सेक्टर फोक्स, और वो पता भी नहीं लगता था कि एक दिन जो है ना वो एक 16 साल का बच्चा बैठा हुआ है जो कि बिल्कुल रैंडम काम कर रहा है, और अगले दिन एक 60-year-old साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी वर्ल्ड बैंक में गुजारी है, और वेरी हार्ड कोर डेवलपमेंट सेक्टर। सो जो वैरायटी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, आर्टिस्ट्स, एजुकेशनिस्ट्स, वो एक तो मज़ेदार भी थी, एंड आई थिंक दैट वॉज द कोर फ्लेवर ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स इन द फर्स्ट कपल ऑफ सीजन, विच इज़ आई थिंक जो इनिशियल सक्सेस, जो कोर ऑडियंस थी ना वो वहाँ पे बिल्ड हुई थी, जिसमें लोगों को डाइवर्सिटी ऑफ थॉट का आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा आया था कि यार ये इतने सारे इंटरेस्टिंग लोग हैं और इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, और जो हम अपने एक बबल में होते हैं काफ़ी दफ़ा, अपने जो सोशल सर्कल होता है उसमें एक ही तरह की बातें होती हैं, एक ही तरह की सोच होती है, तो वो सोच को ग्रो करने का मौका बड़ा अच्छा उस टाइम पर मिला। ओवर टाइम अगर मैं आपको बताऊँ, ओवर द लास्ट फोर ईयर्स एंड फोर सीजन्स एंड 400 एपिसोड्स, तो मैं थोड़ी सी स्टैट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यूट्यूब के ऊपर वी गॉटन नियरली 300,000 फॉलोअर्स विद ओवर 20 million listens on YouTube and 2 million listens on audio platforms with an additional 100 million. So 100 million se zyada hamari views hue hain on different platforms, on smaller clips and so on and so forth. Isi ke saath saath 30 million Pakistanis ko humne directly ya indirectly reach kiya hai over the last 4 years locally and globally through different pieces of content, चाहे वो एक piece हो चाहे वो multiple streams of episodes हो। इसी के साथ साथ overall हमने 1 billion impressions generate किए हैं over the last 4 years, and on YouTube alone 4.6 million hours of content देखा गया है। मतलब कि इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स वॉचिंग दिस कॉन्टेंट, अगर हम उन सब के जो इंडिविजुअल मिनट्स सबने देखे हैं उनको हम कंबाइन करें तो 4.6 million hours was spent on watching Thought Behind Things content, which is phenomenal. अगर मैं internally बात करूँ कि इस podcast को बनाने में हमारी क्या मेहनत और मशक्क़त लगी है, so around हमने इसके ऊपर जो 400 episodes हैं उसकी जो audio और video को record करने में और बोलने में हमने तकरीबन 1,94,00,000 रुपए spend किए अभी तक in the last 41 months. हमने तकरीबन 600 घंटे recording के लगाए हैं इसको रिकॉर्ड करने में. हमने 9,600 घंटे इसके ऊपर लगाए हैं, मैन आवर्स लगाए हैं इसको एडिट करने में, इसको चैप्टर्स, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस बनाने में. सो 9,600 अगर आप देख लें उसको आप 24 से डिवाइड कर लें तो आपके पास दिन आ जाते हैं. काफ़ी सारे दिन अगर यानी पूरे पूरे दिन अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उतना टाइम हमारा लग चुका है इन द मेकिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट. ये नंबर्स देना बड़ा इंपॉर्टेंट है. आई जस्ट वॉन्टेड, क्योंकि जब कॉन्टेंट आता है तो काफ़ी दफ़ा बड़ा मुश्किल होता है ये समझना कि यार क्या ही बिग डील है. यू नो, दो लोग बैठे हैं कैमरे लगा के बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कि उसको पहुंचाना, उसको कंसीव करना, उसको पैकेज करना, उस सब में टाइम, एफर्ट, मनी लगती है. एंड आई वांटेड टू शेयर ऑल ऑफ दैट विद यू. अच्छा जी, 9600 मैन आवर्स ऑफ होस्टिंग, एडिटिंग, मेकिंग चैप्टर्स, टाइटल्स, थंबनेल्स, पब्लिशिंग एक्सेट्रा. उसके अलावा, अच्छा इसमें मैंने बाय द वे जो ये 9600 मैन आवर्स लगाए हैं ये मैंने प्योरली जो प्रैक्टिकल काम है उसके लगाए हैं. इसमें जो मेरा पर्सनल घंटे लग रहे थे ऑफ कंसीविंग, ऑफ रिसर्चिंग, ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट, वो मैंने इसमें पर्सनल नहीं डाले. इसमें मैंने टीम के घंटे डाले हैं और मैंने अपनी जो होस्टिंग के घंटे वो मैंने डाले. उसके अलावा 20 टेराबाइट्स ऑफ डेटा हमने जनरेट किया इन पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने में. और इसमें मैं अगर यू नो किसी और चीज़ के बारे में बात करने से पहले आई जस्ट थॉट कि मैं जो ह्यूमन, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल एफर्ट गई है इस शो को बनाने में, मैं एक तो उसके बारे में बात कर सकूं. और साथ साथ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम ह्यूमन जो एफर्ट की बात करते हैं तो उसमें ये शो बनाने में जो जिन लोगों ने काम किया, जिन जहनों ने काम किया, जिसमें ख़याम साजिद, युसरा मुर्तज़ा, जवाद साजिद और दरमियान में और बहुत सारे लोग हैं, वरदा अली और बहुत सारे दरमियान में आए गए जिन्होंने इसमें एफर्ट डाली. पर्टिकुलरली जो दो लोगों का, ख़याम साजिद और युसरा मुर्तज़ा, दोनों गेस्ट आ चुके हैं शो के ऊपर, और जवाद एंड वरदा जो करंटली इसको हैंडल कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत जिसे कहते हैं कलीदी होता है, कलीदी किरदार है इस शो को डिज़ाइन करने में, इस शो को कंसीव करने में, इस शो को बनाने में, क्योंकि दे वर द पायनियर्स. ये यंग बच्चे थे और इन्होंने आके यू नो आई गेव देम अ डायरेक्शन, आई गेव देम अ विजन, बट दे वर एबल टू पुल थ्रू इट एंड दे वर एबल टू क्रिएट इट. और उनका इम्पैक्ट सिर्फ इस शो तक नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना. जैसे जैसे मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि व्हाट वी अचीव्ड ओवरऑल एज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, बट उनका ये 21-22 साल के बच्चे थे जिन्होंने स्टार्ट में एक ऐसी प्रोडक्ट बिल्ड की जिसका इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री में हुआ, पूरे पाकिस्तान में हुआ. और बहुत सारी चीज़ें जो आज आप देख रहे हैं, बहुत सारे नैरेटिव्स, बहुत सारी जो द वे दैट द इंडस्ट्री इज स्ट्रक्चर्ड और जो आपको कंटेंट नज़र आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है बिकॉज यू नो अर्ली ऑन एक टीम ने एक सर्टन चीज़ डिज़ाइन की और उन्होंने ये चीज़ प्रूव की कि वॉट इज़ विद इन द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटीज़. क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लोग इस चीज़ को मिस कर जाते हैं कि जो स्टार्ट में आते हैं ना लोग, वो सिर्फ और सिर्फ आके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देते हैं. और जब वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाता है तब उस चीज़ को करना, रिप्रोड्यूस करना बड़ा आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है. लेकिन स्टार्ट में सारी एफर्ट लगती है, जो डिस्कवरी है दैट इज़ हाफ द एफर्ट. एंड ऑब्वियसली आई डोंट वॉन्ट टू डिमिनिश जो अब लोग कर रहे हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उसमें ग्रो कर रहे हैं, बट जो डिस्कवरर्स होते हैं उनका हमेशा देयर इज़ अ लॉट मोर एफर्ट गोइंग इन देयर. सो आई वॉन्ट टू जस्ट अप्रिशिएट दैट टीम जिन्होंने उस टाइम के ऊपर यू नो बहुत एक्टिवली काम किया. बहुत यंग बच्चे थे, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, यू नो, बट दे वर एबल टू क्रिएट समथिंग वेरी वेरी फेनोमिनल. अगर मैं TBT पॉडकास्ट की बात करूँ, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ अ फ्यू थिंग्स अबाउट द प्लेटफॉर्म, व्हाट द प्लेटफॉर्म अचीव, एंड आई वॉन्ट टू शेयर दैट एज वेल. जब हमने ये शुरू किया तो उस टाइम के ऊपर इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मीडिया, पर्टिकुलरली ओवरऑल मीडिया में भी, बट डिजिटल मीडिया पर्टिकुलरली, थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. कौन आता था, कौन नहीं आता था, किसको रीच आउट करें और बताएं कि यार हम एक YouTube पे काम कर रहे हैं तो वो आपको सीरियसली नहीं लेगा. इसमें अगर मैं ऑनेस्टली देखूँ ना, 2019 में आप चले जाएं तो YouTube एक यूट्यूबर्स की स्पेस थी. उसमें यंग बच्चे होते थे, जो यंग बच्चे आपस में आके कंटेंट बनाते थे और आपस में एक दूसरे से बातें करते थे और एक दूसरे को शोज़ पे बुलाते थे, और या बच्चे होते थे या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने यूट्यूब को बहुत अच्छा यूज़ किया. सो एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स वो आ रहे थे. स्पोर्ट्स के लोग, आई रिमेंबर शुएब अख्तर साहब का शो आता था उस टाइम के ऊपर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. रमीज राजा साहब भी करते थे यूट्यूब के ऊपर. बट अदर देन दैट, जो जो सीरियस कोट एंड कोट एरियाज थे ना सोसाइटी के, और उससे मेरा क्या मुराद है, उससे मेरा मुराद है पॉलिटिक्स फॉर एग्जांपल, कॉरपोरेट, स्टार्टअप्स, बिजनेसेस, एकेडेमिया, ये लोग यूट्यूब से बहुत दूर रहते थे। अगर ये यूट्यूब पे होते भी थे तो ये एक बहुत बोरिंग, बहुत एक ऐसे सिस्टम में होते थे जिसमें 400-500 व्यूज़ आते थे, कोई उसको देखता नहीं था, बस वो एक बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह कॉन्टेंट रिकॉर्ड होता था और वो यूट्यूब पर पब्लिश होता था। यूट्यूब वॉज अ मीडियम टू रीच द ऑडियंस, बट इट वॉज नॉट टेकन एज अ प्लेटफॉर्म जिसकी अपनी डायनामिक्स हैं ऑफ हाउ यू रिकॉर्ड द कॉन्टेंट, हाउ यू हैव दैट कॉन्वर्सेशन। एंड सो TBT वॉज, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि TBT वॉज वन ऑफ द फर्स्ट, इफ नॉट द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो कि एक यू नो मेन स्ट्रीम MNC CEO को लेकर आया इन लियो ऑफ द यूनिलीवर CEO, सीजन 3 की पहली एपिसोड थी। That literally opened the floodgates for the industry CEOs to every industry CEO after that was, you know, unki teams call kar rahi thi ki ya hamare CEO ko le aaye, hamare CEO ko le aaye, because they realized this. So jab wo Amir Paracha sahab aaye aur unhone, honest to God, main bada mashkoor hu Amir Paracha sahab ka, because what he did was he came in and he had the confidence to be vulnerable, to talk about his failures, to be real. Usse pehle aap corporate CEO se bole ke yaar aa jao. Mujhe yaad hai ek bank ke humne सी लेवल साहब को उससे पहले बुलाया था, पहले तो वो बड़ी मुश्किल से वो आए। जब वो आ गए तो उन्होंने 6 महीने मुझे लटकाए रखा कि जी मेरी टीम अप्रूवल देगी कि आपकी पॉडकास्ट जा सकती है नहीं जा सकती, क्योंकि मैं बैंक को, मेरी रेगुलेशन का मसला है। फिर उसके बाद जब मुझे फाइनली अप्रूवल मिली तो मैंने पॉडकास्ट अपलोड की, तो मुझे 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि यार ये रिमूव करें, ये तो नहीं जाएगी। अच्छा, अगेन ये वो टाइम था जब पावर डायनेमिक बहुत फ़र्क था, मतलब उनको लाना एक बहुत मुश्किल काम था, एक बहुत बड़ी बात थी, और उनके इतने लफड़े होते थे, हालांकि वो पैसे वैसे कोई नहीं दे रहे होते थे, बट वो सिर्फ और सिर्फ कि वो आके बैठ रहे हैं ना आपके साथ, वो भी बहुत बड़ी बात थी टाइप। तो उस टाइम के ऊपर आमिर पराचा साहब आए और उन्होंने हमें ट्रस्ट किया, और उन्होंने हमें ही वॉज रियल एंड ही वॉज ऑथेंटिक, एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट कि उनकी एपिसोड वायरल हुई। जब एपिसोड वायरल हुई तो पूरे कॉर्पोरेट जो पूरा इकोसिस्टम था वहाँ पे सबने देखा, यार ये यूनिलीवर का CEO आ गया, और उसने देखो तरह सबकी वाह वाह हो रही है उसकी। तो लाइन से फिर बहुत सारे CEOs हमें भी रीच आउट किया, बाकी भी पॉडकास्ट के ऊपर एक कल्चर इस्टेब्लिश हुआ कि जी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यूज़ कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो आएँ और वो आके यू नो कंज्यूमर से इंटरेक्ट करें, यार बात करें। क्योंकि इससे पहले वो आते थे तो मैक्सिमम वो कामरान खान के शो पे 2 मिनट के लिए आ जाते थे, राइट, बट आपको कुछ पता नहीं होता था उनके बारे में, वो बस बड़ी बड़ी कंपनियाँ थीं और वो बस थी, यू नो। सो द आइडिया वाज के इनके पीछे जो इंसान हैं, उन इंसानों को लेकर आए, उनसे सोच समझे। और मुझे खासकर ये होता था कि व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी एंड व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन यूनिवर्सिटी, तो जब पाकिस्तान में ना हम यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं, हम कहते हैं यार हु डू वी गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम, या हम किसको देख के हम कहते हैं कि यार वो देखो कितनी ज़बरदस्त कहानी है। हम इलॉन मस्क को देखते हैं, हम बिल गेट्स को देखते हैं, हम स्टीव जॉब्स को देखते हैं, हम इस तरह के लोगों को देखते हैं। हालांकि पाकिस्तानी जब बैठा होता है, वो जब मियां मंशा का नाम सुनता है वो कहता है करप्ट आदमी, वो जब मलिक रियाज का नाम सुनता है वो कहता है करप्ट आदमी, वो जिस बड़े आदमी का नाम सुनता है वो कहता है करप्ट आदमी। तो मैंने सोचा इसके बारे में, मैंने कहा यार क्या हमारे लोग बहुत करप्ट हैं और वो लोग बहुत अच्छे हैं, या हमारे लोगों का जब जो एज इंडिविजुअल्स, एज स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम वी वुड लुक एट मियां मंशा एंड वी वुड लुक एट इलॉन मस्क या स्टीव जॉब्स, वाई वुड वी गेट इंस्पायर्ड बाय वन एंड कॉल वन करप्ट? इट वॉज लार्जली बिकॉज we hadn't humanized, and humanized bada important hai from the very first season, that was a core vision of the product of this podcast. Humanize ka murad ye hai ki yaar ek insaan ki insaniyat ko samne la ke jab aap rakhte hain na, to uski feeling se aam aadmi connect karta hai, aur phir wo realize karta hai ki yaar ye bhi meri tarah ka insaan hai, ye koi bahut badi koi bala nahi hai, jo ki Pakistan mein largely हम जब बड़े लोगों को देखते हैं, हम पॉलिटिशियंस को देखते रहे, हम कॉर्पोरेट लीडर्स को देखते रहे, हम अमीर आदमी बिजनेसमैन को देखते रहे, तो हमने ना क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा एक गेट के पीछे छुपा के रखा कि हम जब सोचते हैं उनके बारे में तो हम कहते हैं यार ये तो बस ये अमीर लोग होते हैं, करप्ट होते हैं, इनका तो काम है कि ये जो है ना बस 2 नंबरी करें और हमें जलील करें और हम बेचारे गरीब और बेचारे हम बेचारे। अच्छा, लेकिन अमेरिका का अमीर तो इनसे भी बहुत गुना अमीर है, और वो भी बहुत सारी हरकतें करता है, और मतलब इनसे शायद ज़्यादा भी करता हो। लेकिन क्या वजह है कि जब हम उनको देखते हैं तो हमें वो फीलिंग्स नहीं होती हैं? और उसकी वजह ये है कि वहाँ पर ना एक तो देर वेरी मच मोर रियल ओपन, प्लस उनके लोगों के बारे में फिल्में बनती हैं, उनके लोगों के बारे में बायोग्राफीज लिखी जाती हैं, उनके लोगों के फेलियर्स को मीडिया कवर करता है, और उनके फेलियर्स को जब मीडिया कवर करता है तो उन लोगों को रोना नहीं आता। जिस तरह पाकिस्तान में पिछले दिनों 2-3 स्टार्टअप्स फेल हुई, तो लोगों ने खप मचा दी कि यार उसके बाद मीडिया ने थोड़ा सा कवर किया तो लोगों ने कहा जी आप देखें ज़रा पाकिस्तानी कितने बुरे लोग हैं, अभी स्टार्टअप चली नहीं है, अपने लोगों को काटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। यार फेलियर्स को कवर करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, फेलियर्स को कवर करने का मतलब ये है कि आप उनसे सीखें और उनसे सीख के फिर आगे फर्दर सक्सेस बनाएं। तो पाकिस्तान में वी हैड अ वियर्ड रिलेशनशिप विद मीडिया एंड वियर्ड रिलेशनशिप विद टेलिंग आवर स्टोरीज एंड टॉकिंग अबाउट आवर फेलियर्स एंड टॉकिंग अबाउट आवर जर्नीज एंड टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्ट टाइम्स दैट वी हैड। सो एनीवेज आमिर पराचा साहब आए और उन्होंने आके यू नो ही वॉज हिमसेल्फ, ही वॉज ऑथेंटिक एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट पॉडकास्ट बिकेम वायरल। उसको बहुत सारे लोगों ने देखा और उसकी वजह से एक बैरियर ब्रेक हुआ, एक रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी बनी कि नहीं कॉरपोरेट के लोग, पीपल हु आर सम ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन मेकर्स इन पाकिस्तान, राइट, ये छोटी कंपनियाँ नहीं, बिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनियाँ हैं, इनके डिसीजंस जो हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, इनके डिसीजंस जो हैं वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जॉब्स को इम्पैक्ट करते हैं, वो क्या सोचते हैं उसको समझना बड़ा ज़रूरी था और उसकी वजह से फिर वो एक चीज़ स्टार्ट होगी। खैर एनीवेज एकेडेमिया पहली दफ़ा हमारे पास आए, लम्स के VC आए, फास्ट के डायरेक्टर आए, इससे पहले एकेडेमिया तो बिल्कुल ही नहीं आती थी TV पे, तो बहुत ही दूर की बात है। अगेन एकेडेमिया वो एरिया है जहाँ पर आपके जो कल का लीडर है, कल का जो इनोवेटर है वो बन रहा है। सो वो क्या सोचती है, वो किस तरह सोचती है, वो उनके ख्यालात क्या हैं, उनकी जो लीडरशिप है जो उस एकेडेमिया को शेप कर रही है आज और उन नौजवानों को शेप कर रही है, उनकी क्या सोच है, वो इधर आए पहली दफ़ा। जब वो अगेन वो आए तो उसके बाद फिर लाइन से नाउ वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ ओपनिंग देमसेल्व्स अप बाय गोइंग टू डिफरेंट पॉडकास्ट एंड सो। हमारे पास भी फिर इवेंचुअली गिफ्ट यूनिवर्सिटी के VC थे आई थिंक जो आए थे। इसी के साथ साथ मेन स्ट्रीम बिजनेस की अगर हम बात करें तो अब्दुल रजाक दाऊद साहब यू नो जो कि डेस्कॉन चलाते हैं, ह्यूज एंटरप्राइज, उनकी फैमिली का जो अगर आप देखें ओवरऑल तो यू नो एंग्रो इज़ बाय देयर फैमिली, फातिमा फर्टिलाइजर एक्चुअली वो स्टार्टेड बाय देयर फैमिली एज वेल, डेस्कॉन तो है ही है अमंगस्ट अ रेंज ऑफ अदर थिंग्स। फॉर द फर्स्ट टाइम ही केम इन, ही शेयर्ड हिज स्टोरी एंड वी वर एबल टू यू नो दैट गॉट अ लॉट ऑफ व्यूअरशिप एज वेल एंड वी वर एबल टू ब्रेक दैट बैरियर एज वेल। फिर पॉलिटिक्स एक बहुत मेजर एरिया जो कि अगर मैं पहली दफ़ा की बात करूँ तो 2019 में जब हमने अनबॉक्सिंग पाकिस्तान किया था विद TCM Originals तो वहाँ पर हम पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस को लेकर आए थे। लेकिन जो अगर मैं मेन स्ट्रीम की बात करूँ तो उसमें दो पॉडकास्ट मैं पर्टिकुलरली कहूँगा, एक हाफिज़ नईम और रहमान साहब की जो कि जिस टाइम के ऊपर आए थे तो उस टाइम के ऊपर लोकल बॉडी की इलेक्शन हो रही थी कराची में और मेन स्ट्रीम जो आपका मीडिया था उसके अंदर जमात इस्लामी की इतनी बात नहीं हो रही थी। हो सकता है वो फेडरल की पॉलिटिक्स थी, PTI वर्सेस PMLN और पीपल्स पार्टी और व्हाटएवर एंड जमात इस्लामी वाज दिस न्यू इनकम्बेंट जो के आके चैलेंज कर रहा था यू नो स्टेटस को विच इंक्लूडेड PTI। सो दे सेड कि यू नो वो साइड से बिल्कुल आ रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोकल बॉडी में XYZ ये सारी चीज़ें करेंगे एंड देयर टीम रीच्ड आउट एंड आई थॉट कि यू नो मुझे कराची को समझना था, मुझे कराची की लोकल बॉडी पॉलिटिक्स को समझना था, सो आई ब्रॉट हिम इन एंड अगेन नईम उर रहमान साहब का बहुत शुक्रिया कि वो ही वॉज सुपर ऑथेंटिक, ही वॉज सुपर रियल। और ये वो टाइम था पॉडकास्ट का जब ऑनेस्ट टू गॉड ऐसे लोग आ रहे थे जो कि आते थे और उनको कोई टेंशन नहीं होती थी क्या सवाल होंगे क्या नहीं होंगे, वो बैठते थे और वो बातें करते थे और मतलब ऑथेंटिसिटी, ये ऐसी पर्सनैलिटीज़ थी जिनके साथ बात करके मज़ा आ रहा था और वो जब उनसे बात करके मुझे मज़ा आया तो वही रिफ्लेक्ट भी हुआ व्यूअरशिप में क्योंकि उस पॉडकास्ट के ऊपर अगेन दैट बिकेम ह्यूज सुपर वायरल और उसके ऊपर जो है वो एक बहुत मैसिव शिफ्ट आया था। मैंने देखा कराची में बहुत सारी पॉडकास्ट उसके बाद अपीयर हुई जिन्होंने फिर इवेंचुअली लोकल बॉडी इलेक्शंस को कवर करना शुरू किया। सो ऐसी पॉडकास्ट जो इस पॉडकास्ट के रिलीज़ होने के बाद स्टार्ट हुई और उनकी पहली 5-6 एपिसोड ही ये थी कि यू नो नईम उर रहमान के साथ जो PTI के कंटेंडर थे, जो पीपल्स पार्टी के कंटेंडर थे, वो सब फिर आके पॉडकास्ट पे आ गए और वो एक खलबली मच गई कि यार ये नईम उर रहमान डिड दिस एंड एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, व्हाई आर्ट वी डूइंग इट, यू नो डूइंग दिस, राइट। सो दे स्टार्टेड अपियरिंग ऑन डिफरेंट शोज दैट वर इन कराची ऑब्वियसली बिकॉज आई वाज इन इस्लामाबाद एंड सबके लिए आना भी मुश्किल था। बट मेरे लिए हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ रही थी कि यार मेरा ये नहीं रहा था कि मैंने एक चीज़ कर ली है तो मैं सारा ही लपेट लूँ। मेरा पॉइंट ये था कि मैं ब्रेक करूँ अगेन द रेल्म्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, राइट, कि क्या पॉसिबल है वो एक दफ़ा करके दिखा दूँ एंड देन द रेस्ट इज़ गोना हैपन ऑन इट्स ओन। एंड सो मैं अपना ढोल नहीं पीटना चाह रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू आई जस्ट वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आगे जो मैं बातें करूँगा उससे आपको समझ आएगी कि क्यों वो सेलिब्रेशन मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो मेरे लिसनर्स हैं जो मुझे उस टाइम से देखते हुए आ रहे हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या हमने अचीव किया। उसमें कोई हमारा बड़ी बात नहीं थी. इट्स अ मजमुआ ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल. अगेन ये नईम रहमान साहब की जो टीम थी जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया और उन्होंने कहा कि यार वो आना चाहते हैं. यूनिलीवर की टीम थी जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया और उन्होंने कहा वो आना चाहते हैं. तो मेरा इसमें सच्ची बात है काम ही कमाल था. बट ये था कि वी वर जस्ट एबल टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड एबल टू क्रिएट दैट विजन दैट अलाउड फॉर अ लॉट ऑफ दिस टू हैपन. सो एनीवेज वो एक मेजर पॉइंट था. फिर जो नईम रहमान साहब के बाद जो आई थिंक जो सबसे पिवटल इसको आप अचीवमेंट भी कह लें और इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा कि वॉट हैपन्ड एट ड्यूरिंग दैट पॉडकास्ट एंड आफ्टर दैट पॉडकास्ट. बट वॉट रियली चेंज्ड द गेम फॉर पॉडकास्टिंग इन पाकिस्तान आई वुड से वॉज मे. एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद बट मे 2022 अ फ्यू मंथ्स आफ्टर अ कपल ऑफ अ मंथ और सो आफ्टर द बट इनफैक्ट वन मंथ आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो पाकिस्तान में हुआ था और PTI की गवर्नमेंट जो चेंज हुई थी और उसमें इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ पॉडकास्ट हुई. सिर्फ मैं नहीं था, जुनेद भाई भी थे साथ, तला भाई भी थे फ्रॉम TCM. ओरिजिनली एक्चुअली अलॉट ऑफ पीपल डोंट नो ओरिजिनली उसमें जुनेद भाई और मुरू वॉज सपोज टू बी देयर बट मुरू हैड गॉट अ फ्लू एट द वेरी एंड एंड दैट हैड टू चेंज. वरना मैं वो बड़ा मज़े की होती पॉडकास्ट एनीवेज. तो वो पॉडकास्ट जो थी ना वो बड़ी मोन्यूमेंटल थी बिकॉज एट अ टाइम व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू लिसन टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के ऊपर उनका आना एक ऐसे मीडियम में. अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये आप नोटिस करिएगा उससे पिछले दिन शान जो एक्टर है उनका एक इंटरव्यू आया था और लार्जली खान साहब ने सेम बातें की थी लेकिन वो इतना वायरल नहीं हुआ और वो पॉडकास्ट जो थी वो इतनी सुपर वायरल हो गई थी. उसकी वजह मैंने भी बड़ा सोचा उसके बारे में बट आई न्यू क्योंकि हम उसी एंगल को टैप करने गए थे कि एक विजुअल इमेजरी भी एक चीज़ होती है यंग नौजवानों के साथ ऐसे लोगों के साथ जिसमें आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इतनी एक सीरियस फिगर और ये नौजवान यूट्यूबर्स ये आके बैठे होंगे और एक प्रॉपर जो विजुअल इमेजरी हमने क्रिएट की थी. TBT की टीम ने पूरा प्रोड्यूस किया था. हम अपनी टेबल लेके गए थे, अपनी इक्विपमेंट लेके गए थे. ये इस तरह का माइक एक पॉलिटिशियन एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन के सामने रखना और वो जो विजुअल इमेजरी थी ना उसकी वजह से दैट कॉन्टेंट पीस बिकेम सुपर एक्साइटिंग बिकॉज अगेन इट वॉज लेस अबाउट वॉट वॉज सेड इन द कॉन्टेंट पीस एंड मोर अबाउट द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी दैट अ लॉट ऑफ व्यूअर्स वर सीइंग. यार ये भी हो सकता है क्या इतना डायरेक्ट, क्योंकि इस तरह के जो ये विजुअल मीडियम है ना इसमें मैंने आपको स्टार्ट से ये बात बोली ह्यूमनाइजेशन एंड कनेक्टिंग विद अ फीलिंग. मैं साइड पे बैठ के मैं कर सकता था जिस तरह वो शान साहब का इंटरव्यू था कि मैं यूँ कुर्सी साइड पे रखता, कॉलर माइक लगाता और यू नो खान साहब कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, बट उसका वो इम्पैक्ट ही नहीं आना था क्योंकि जो ये वाला मीडियम था ना ऑफ हेडफोन्स लगे हुए हैं, माइक ऑन है, खान साहब सुकून से बैठे हैं और यू नो मल्टीपल वेरी वेरी सक्सेसफुल यूथ लीडर्स सामने बैठे हुए हैं और वो सीरियस तरीके से कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट ही कुछ और था. और वो इम्पैक्ट हुआ जब हमने जब वो पॉडकास्ट रिलीज़ की और ओवर नाइट उसके 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे पता नहीं किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. इट वॉज क्रेजी वायरल ऑल ओवर एवरीवेयर. And I think that was the moment when everything changed. Because in Pakistan, that's where people realized just the power of the medium, the importance of the medium. Agar aap notice kare to that is when, you know, State Bank ki podcast shuru ho gayi. To, you know, religious scholars were doing podcast. Every journalist, ek to wo journalist ko ye hua ki yaar ye to hamari territory mein ye log aa gaye hain, ye kya scene hai. To they started doing podcast. Halanki we were never in their territory. Journalist ka kaam alag hai. Unhone factual, serious, timely cheezon ko, you know, कैप्चर करना होता है. हमारा काम था कि हमने चीज़ों को ह्यूमनाइज करना है, हमने इंडिविजुअल्स को ह्यूमनाइज करना है. सो बोथ कैन वेरी मच एग्जिस्ट. बट एनीवेज जब एक दफ़ा नई चीज़ जब एक कंटेंट पीस जब अपनी क्रिटिकल मास में पहुंचता है ना तो हमेशा लेफ्ट राइट एक खलबली मचती है, लोगों को एक इनसिक्योरिटी हमेशा होती है. एंड आई हैड प्रोजेक्टेड दैट. वो मैंने अपनी टीम को पूरा बताया हुआ था कि ये इस टाइम के ऊपर ये पीक करेगी 2022 में और ये होगा. सो दैट हैपन्ड. And you know the rest is history. Podcasting became a thing, and you know today, alhamdulillah, we can now say that we have a thriving podcast industry in Pakistan. अच्छा अब ये तमाम चीज़ें जो थीं वो तो चली रही थीं और you know मुझे बड़ी खुशी होती है कि खासकर जब आप अपने आप को disconnect करके देखते हैं ना तो आपको एक लोगों को नहीं पता कि आपके काम का इम्पैक्ट क्या रहा है बट आपको पता होता है क्योंकि आप कर रहे होते हैं और आपने उससे पीछे किया होता है तो आपको एक खुशी होती है कि यार मैंने एक इम्पैक्ट तो जनरेट किया जिसकी वजह से यू नो देयर इज सम गुड हैज़ कम आउट ऑफ इट. तो एक तो वो है ही है बट ये जो मैंने नंबर्स भी दे दिए कि यार इतने व्यूज़ आ गए, इतने ये आ गए, इतने घंटे हमने रिकॉर्ड कर लिया वगैरह वगैरह, ये वैनिटी मैट्रिक्स हैं लार्जली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये आपकी ईगो को फीड करने वाले मैट्रिक्स हैं. बट जो चीज़ रियली मेरे लिए बहुत पावरफुल थी, अगर मैं कहूँ ना कि मैंने अचीव किया इस पॉडकास्ट से, वो मैंने ये अचीव किया कि मैंने 400 ऑफ सम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन पाकिस्तान से जब मैंने बातें की ऑन एंड ऑफ कैमरा. मतलब ऑन कैमरा तो आप लोगों ने बहुत कुछ देखा, बट ऑफ कैमरा आधा आधा घंटा मैंने इन लोगों से बात की. और जितना कुछ मैंने सीखा है अबाउट पाकिस्तान, अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमी, अबाउट पाकिस्तान बिजनेसेस, अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, निज़ाम, स्ट्रक्चर्स, पावर किस तरह काम करती है, मैं ऑनेस्ट टू गॉड ये कह सकता हूँ कि जो मुजम्मिल जिसने 26 सितंबर 2020 में ये पॉडकास्ट शुरू की और जो आज का मुजम्मिल है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क, मतलब वो बंदा ही फ़र्क है. वो रिकग्नाइज़ भी नहीं कर पाता वो वाला मुजम्मिल, इतना ज़्यादा डिफरेंस है. सो बहुत सारी चीज़ें मैंने इस शो की वजह से सीखी इन अ लॉट ऑफ एरियाज, एंड आई थिंक दैट वॉज सो फार माई बिगेस्ट अचीवमेंट, टू बी एबल टू फाइंड स्मार्ट पीपल बट ऑल्सो टू बी एबल टू हैव स्मार्ट कॉन्वर्जेशंस एंड रेडिकली इंक्रीज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, माई नॉलेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. पर्टिकुलरली अगर मैं दो एरियाज़ को कहूँ जिसके बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की शो पे, या मैंने इतनी पॉडकास्ट नहीं की, बट यू नो, बिकॉज जब आप इतनी डाइवर्स कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपका एक ओवरऑल थॉट प्रोसेस एलिवेट हो रहा होता है. तो मेरा इस्लाम के बारे में एंड अंडरस्टैंडिंग वाई इस्लाम यू नो सेड अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट दे सेड, बिकॉज वी वांट टॉकिंग अबाउट इस्लाम बट वी टॉकिंग अबाउट सोसाइटी एंड वी टॉकिंग अबाउट बिजनेस एंड वी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी. एंड स्लोली एंड स्टेडली जब भी आप इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो आपको सोल्यूशन नज़र आना शुरू हो जाता है इस्लाम से, और आपको समझ आ जाती है कि यार इस्लाम ने क्यों कहीं वो चीज़ें. क्योंकि जब आप पॉडकास्ट के अंदर डाइव डीप करते हैं चीज़ों में कि नहीं यार लेट्स गो टू ग्रास रूट, लेट्स गो बैक प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि अच्छा ये मसला है लेकिन क्यों है और क्यों है और क्यों है, तो आप ग्रास रूट में देखते हैं कि जो अ लॉट ऑफ व्हाट दी अर्ली इस्लामिक थॉट वाज, वो उन तमाम मसाइल को वैसे ही सॉल्व करते हैं. एनीवेज मेरी उसमें बहुत एनलाइटमेंट हुई. दूसरा ओवरऑल ह्यूमैनिटी के ऊपर कि इंसान क्या हैं, किस तरह के हैं, क्या सोच है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ख़ुद भी ऐसा था, और आने वाली एपिसोड्स में आपको थोड़ा सा बताऊंगा भी अपनी पास्ट एवोल्यूशन के बारे में. बट हम विदाउट अनलिमिटेड नॉलेज हम इतनी स्टूपिड बातें सोच रहे होते हैं, इतने स्टूपिड हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एज पीपल एज ह्यूमंस, क्योंकि हमारा छोटा सा स्कोप होता है और हम उस स्कोप में थोड़ी सी नॉलेज लेकर हम इतने फने खान बने फिर रहे होते हैं. और जब आप बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और क्रॉस कटिंग जैसे कहते हैं ना इंटरसेक्शनल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, तब आपको समझ आती है कि दुनिया इतनी सिंपल नहीं है. मेरी नीड्स एंड वांट्स जो हैं उसमें बहुत सारे और लोगों की नीड्स एंड वांट्स हैं, और बहुत सारे और लोगों के डिफरेंट एजेंडाज़ हैं, और वो सब मिल के एक दुनिया बनती है, और आपने उस सबको बैलेंस करना है. तो यू नो इन टर्म्स ऑफ दैट मेरी बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हुई. बट यू नो आई जस्ट थॉट स्टार्ट किया मैंने 40 मिनट इसके ऊपर लगा दिए हैं, सो जस्ट वॉन्ट टू गिव यू सम समरी ऑफ द लास्ट 4 years एंड 4 seasons दैट वी डन सो फार. द सेकंड थिंग आई वॉन्ट टॉक अबाउट ऑन दिस एपिसोड इज आई वॉन्ट टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ पॉडकास्टिंग. मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर पहले भी जिक्र कर दिया कि यू नो अर्ली ऑन पॉडकास्ट थी TBT itself 2019 में आया, 2020 में आया essentially, 2021-22 और 22 में मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ था कि पॉडकास्टिंग इज गोइंग टू बिकम ह्यूज, इट इज गोइंग टू बी वेरी क्विक, बट आई जस्ट वांटेड टू पुट दिस आउट देयर. देखिए मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ डेटा एनालिस्ट, एंड व्हेन आई गॉट इनटू दिस तो मैंने कुछ डेटा क्रंच किया था ग्लोबली डिफरेंट एरियाज़ का, और उसको मैंने कोरिलेट किया था विद पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानी ऑडियंस. पर्टिकुलरली जब आप पाकिस्तान की जो इंटरनेट ऑडियंस है उसको देखते हैं कि उनको कितना टाइम हो चुका है इंटरनेट के ऊपर, और उनकी एवोल्यूशन, क्योंकि लार्जली ऑडियंस की एवोल्यूशन कर्व जो है ना वो बड़ी सिमिलर होती है पूरी दुनिया में. तो जब मैंने उसको एक्सट्रापोलेट किया टू बाहर का डेटा, तो आई न्यू कि 2022 के अंदर एक इम्प्लोजन इमिनेंट है फॉर दिस फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट. इवन दो अगेन उस टाइम पे लोग मुझे कह रहे थे कि शॉर्ट फॉर्मेट चलेगा, मेरा डेटा मुझे कुछ और बता रहा था, ये बता रहा था कि शॉर्ट फॉर्म चलेगा, बिल्कुल मैं उससे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन शॉर्ट फॉर्म के साथ ये लॉन्ग फॉर्मेट भी चलेगा, अज्यूमिंग कि आप उसको सही तरीके से उस रेलिवेंट तरीके से करो, यू नो जिस पे लोगों को वो पसंद भी आए. अच्छा, जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो कंटेंट इंडस्ट्री के अंदर जब भी एक नया जॉनरा आ रहा होता है, जिस तरह व्लॉगिंग थी वो एक जॉनरा था, पॉडकास्टिंग इज अ जॉनरा, तो जब भी एक नया जॉनरा आता है तो सबसे पहले उसमें कुछ लोग आते हैं और वो आके उसको करते हैं और कंटिन्यूसली करते हैं इनफ टाइम्स टू अगेन लाइक आई सेड टू शो केस द रियलम ऑफ पॉसिबिलिटी, टू शो केस अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. और वो जब उसको करते हैं तो अर्ली ऑन आपको अर्ली अडॉप्टर्स मिलते हैं, जनरली वो लोग होते हैं जो कि थोड़े दे आर नॉट मास मार्केट, ये जनरली वो होते हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, थोड़े ज़्यादा एक्सपर्ट व्यूअर्स लिसनर्स होते हैं, और ये क्विकली ये रियलाइज कर लेते हैं कि यार अच्छा इस कॉन्टेंट का पोटेंशियल क्या है, तो दे कम एज द फर्स्ट वंस. अगेन पॉडकास्टिंग में मैं कंपेयर करूँगा विद व्लॉगिंग. फॉर एग्जाम्पल 2017-18 में जब व्लॉगिंग का बूम था, तो उस टाइम पे ये था कि जी इरफान या मुरू या इस तरह के लोग जो स्टार्ट में कर रहे थे, जब इन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया तो 10-15-20-50,000 की इनिशियल फॉलोइंग थी. जनरली अर्बन यू नो लम्स फास्ट नस्ट के बच्चे, जो कि बहुत ही छोटी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, जिन्होंने जो कि बाहर का कंटेंट देख रहे होते हैं, तो वो लोकल कंटेंट देखते हो, कहते हैं यार ग्लोबल स्टैंडर्ड क्वालिटी का कंटेंट लोकल कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल है, वाओ दैट्स ग्रेट, दे जंप ऑन टू इट. और इसमें हमेशा 1-1.5-2 साल लगते हैं जस्ट टू बिल्ड दैट बेस, टू बिल्ड दैट स्ट्रक्चर, जिसको आप सस्टेनेबली कह सकते हैं कि हाँ जी, मतलब ये नहीं होता कि यार एक नई चीज़ आई, इनोवेटिव चीज़ आई और ओवरनाइट सक्सेस हो गई और वो एक थिंग बन गई. हमेशा उसके पीछे एक मेहनत लगती है, 1.5-1.5 साल लगता है, जो कि व्लॉगिंग में भी लगा, पॉडकास्टिंग में भी लगा. बट आफ्टर यू आर एबल टू डू दैट, यू आर एबल टू क्रिएट अ स्मॉल डेडिकेटेड कम्युनिटी एंड ऑडियंस, तो उसके बाद फिर एक मेजर इवेंट होता है. जिस तरह मैं पॉडकास्ट में कहूँगा, इरफान जुनेजो का एक इवेंट था जिसमें आई बिलीव ही वेंट टू द फुटबॉल वर्ल्ड कप और समथिंग टू डू विद द फुटबॉल वर्ल्ड कप, एंड वो इंटरनेशनल फुटबॉलर से जाके मिला था और उसकी व्लॉग हुआ था. और आई रिमेंबर दैट वेंट क्रेजी वायरल एंड पीपल सडनली रियलाइज अगेन, क्योंकि वहाँ पर लोगों को रियलाइज हुआ कि यार ये जो व्लॉगिंग, जिसको देख के हम कह रहे थे कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, समझ आ रही नहीं आ रही, इसका पोटेंशियल ये है, राइट? सो देयर इज ऑलवेज अ मेगा इवेंट जिसमें पोटेंशियल उभर के बाहर आता है. फॉर अस, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी इंजीनियर्ड दैट, वी न्यू कि इस टाइम के ऊपर ये होगा, वॉज द इमरान खान पॉडकास्ट, बिकॉज एट द टाइम we knew this is one of the if not the most popular person in Pakistan, and when he appears on a podcast, to aaj ke baad humse koi ye nahi bolega, kyunki pehle hota tha, hum kehte the sir podcast karni hai, wo kehte the wo kya hota hai, fir hum kehte the sir interview karna hai, to hume ye pata tha ki you know what this is going to achieve is ke the one person that everybody in Pakistan wants to talk to, if he can go and sit on a podcast, that means that medium is open for everyone essentially. And so we hit the critical mass. Achha, critical mass kya hota hai ki jab wo mega event hota hai to uske baad se na suddenly jo growth hoti hai kisi bhi medium ki wo is tarah se hoti hai. I don't know if I can show you a graph, but wo ek mountain hill ki tarah hoti hai, wo peak karti hai aur fir wo niche aati hai aur fir wo sustainable hoti hai. To is waqt post Imran Khan what happened was ki humne na wo jo peak se pehle ka ek what's the word for it, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का टाइम हमने देखा, जिसमें लोगों को समझ आ गई कि अच्छा यार ये मीडियम बहुत पावरफुल है. और फिर हमने देखा कि एवरीवन अराउंड अस वाज स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट, और हमने पिछले एक साल में देखा, जिसकी वजह से हमने एक तो पॉडकास्ट बहुत सारी होती हुई देखी, फिर हमने उसके काउंटर भी देखा कि जिसमें अली सुफियान वासिफ की वीडियोज वायरल हो रही हैं अबाउट क्रिटिकिंग पॉडकास्ट, राइट, टॉकिंग अबाउट कि ये तो हर बंदा पॉडकास्ट कर रहा है, हर बंदा बैठ गया तो वो स्मार्ट हो गया, वो सियाणा हो गया, तो यू नो सो कल्चर, एक चीज़ कल्चर का हिस्सा बनना शुरू हो गया और उसका काउंटर कल्चर भी आना शुरू हो गया. और ये होता है, ये लास्ट टाइम जब व्लॉगिंग हुई थी तो एवरी किड वांटेड टू गेट अ सोनी कैमरा एंड वांटेड टू क्रिएट अ व्लॉग लाइक इरफान जुनेजो. 2022 में जब हमने ये पॉडकास्टिंग वाला क्रिटिकल मास इवेंट किया, उसके अगले 1-1.5 साल में एवरी किड वॉन्टेड टू, एवरी पर्सन, एवरी कंपनी, लिटरली पीपल वुड रीच आउट टू अस कि यार हमने कंपनी ने एक पॉडकास्ट बनानी है, एवरी वन वॉन्टेड टू डू अ पॉडकास्ट, एंड दैट वॉज ग्रेट एंड दैट वॉज फाइन. अच्छा, उसके बाद होता ये है कि क्रिटिकल मास के बाद ना हमेशा ग्रोथ आती है. ग्रोथ जब आती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि गुजरे होते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि यार ये देखो ज़रा, ये इमरान खान से बातें कर रहा है, इसका तो मतलब है कि यार ये तो बड़ी पावरफुल चीज़ है, यू नो कल को इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो ये तो इमरान खान साहब के सामने बैठने का बेहतरीन तरीका है. तो लोग पावर के लिए उसमें आते हैं, या लोग पॉपुलैरिटी के उसमें आते हैं कि यार ये तो देखो कितनी वायरल हो गई ये एपिसोड, तो हम भी पॉडकास्ट शुरू करते हैं, हम भी क्विकली वायरल हो जाएंगे, हमें तो कुछ करना भी नहीं है, मशहूर आदमी को सामने बिठाएंगे, उसके खाते में वायरल हो जाएंगे. या पैसा, कि यार ये देखो इतनी वायरल, और पैसा आफ्टर 2022 सडनली ब्रांड्स केम इन एंड देयर वाज मनी, और नॉट क्रेजी मनी बट सम मनी हैड स्टार्टेड टू कम इन. सो एक फोमो इफेक्ट आता है और एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट इन टू दैट. सो वो हुआ, और जो कि अब कर्व आपका यूं ग्रोथ की तरफ, पीक की तरफ जाना शुरू हुआ. अच्छा, उस टाइम मुझे लोग कह रहे थे कि हर कोई कर रहा है, आपको परेशानी नहीं हो रही, आपको टेंशन नहीं हो रही, मैं उनको यही कह रहा था, मैंने कहा यार मुझे टेंशन नहीं हो रही क्योंकि ये होना था, और 90-100% ऑफ द पीपल, द न्यू पीपल हु विल एंटर दिस राइट नाउ, वो नेक्स्ट 18-24 मंथ्स में 95% विल गो अवे, बिकॉज 95% केम इन फॉर मनी, पावर, पॉपुलैरिटी, दैट इज़ वेरी हार्ड. इट सीम्स फॉर देम दे सॉ द लास्ट 2 मंथ्स ऑफ आवर ग्रोथ, and they came in or they are coming in because they think that it is that easy. When they're going to come in, they will realize how difficult it is. So the only 5% who will remain, and hamesha aisa hi hota hai कि अगेन व्लॉगिंग की मिसाल दूंगा, व्लॉगिंग में एवरीबडी वॉज अ व्लॉगर एट द टाइम. ओवर टाइम आप देखें तो इरफान, मुरू आर स्टिल देयर, दे आर स्टिल कंसिडर्ड द टॉप ऑफ द गेम. हाँ, 5% उसमें ऐड हुए, उसमें राना हमजा सैफ ऐड हुआ, उसमें बहुत सारे और ऐड हुए जिन्होंने इनोवेट करके, क्योंकि दे डिडंट कम इन बिकॉज दे सॉ के यार अच्छा इरफान को फुटबॉलर्स का एक्सेस मिल गया तो मैं भी आ जाता हूँ. दे केम इन बिकॉज दे अंडरस्टूड द मीडियम एंड दे सेड कि इफ दिस मीडियम कैन बी अप्लाइड टू दिस देन मे बी आई कैन यूटिलाइज दिस मीडियम एंड डू माई ओन थिंग एज वेल. सो नाउ आई फील लाइक वी हैव रीच्ड द पीक. सो डिसम्बर 2023 वॉज पीक इन टर्म्स ऑफ पॉडकास्टिंग इन पाकिस्तान, दैट्स माई ओपिनियन. रफली अराउंड 16 मंथ्स आफ्टर द 2022 इवेंट, मे बी यू कैन से चलो मार्च हो जाएगा अगर 18 महीने की टाइम लाइन लें, बट पीक हमने रीच कर लिया है और अब आपको ना वो कम होता हुआ नजर आएगा. अब पॉडकास्टिंग विल बिकम अ थिंग एज जस्ट अनदर थिंग. पहले पिछले डेढ़ साल में तो एवरीबडी वॉज लाइक ओ माई गॉड पॉडकास्ट पॉडकास्ट पॉडकास्ट. नाउ इट विल बिकम जस्ट अनदर थिंग एज अ बिलियन अदर जॉनराज दैट एग्जिस्ट. हाँ, वो एक शो है, वो डिफरेंट लोग हैं, वो करते हैं, वो बातें करते हैं, वॉट एवर. And what's going to happen is that more and more and more people who came in early on will begin to stop producing because it's too much work with too little return unless this is what you genuinely want to do and unless you're driven by value more than the superficial things. And so this is the moment jab aap jaake na jo original creator hota hai wahan par uski growth ab shuru hoti hai. Uski growth us darmiyan 18 mahine mein nahi hoti, क्योंकि उन 18 महीने के अंदर हमेशा अल्टरनेट फॉर्म्स इमर्ज कर रहे होते हैं. तो आपने ऑलरेडी अपना पीक हिट किया है और अब आपने अपने पीक की डिप लेनी है और फिर उस डिप के बाद आपने इवॉल्व करना है और जहाँ पर ये इंडस्ट्री का पीक अब स्विच हो रहा है वहाँ पर आपका फिर पीक वापस उठता है. वो किस स्पीड में उठता है वो एक आर्ग्यूएबल बात है और उसमें डिपेंडेंसी बहुत इस चीज़ की है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. बट दिस उस आपने उस वक्त तक यू हैव टू कीप योर हेड डाउन एंड कीप ऑन डूइंग योर जॉब, क्योंकि जो अब ऑडियंस जो ये लोग आए थे ना वो अच्छे इस वजह से थे बिकॉज दे क्रिएटेड एन एपेटाइट फॉर लॉन्ग फॉर्मेट पॉडकास्ट. सो उन सब ने आके ये किया एंड देन क्रिटिकल मास आया ऑडियंस का. सर दो साल पहले जब हम कर रहे थे ना लोगों को समझ ही नहीं आती थी क्या होता है पॉडकास्ट, क्या कर रहे हो, ये क्या बेवकूफ़ों वाली चीज़ है. आज एवरीबडी नोज व्हाट अ पॉडकास्ट इज, राइट. सो डिमांड सप्लाई की गेम है. अब जो सप्लाई साइड है उसके अंदर से मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल लीव और देयर वंस हु विल रिमेन well you'll be able to see very clearly the difference in terms of the quality, not to say that interesting people will not emerge but jo dil se kar rahe honge na unki quality aapko nazar aa jayegi. Unke ye nahi ki unka camera bada acha hai, unki audio quality badi achhi hai, but unke content ki authenticity se aapko nazar aa jayega ki nahi yaar ye waqai achhi cheez hai. And so a very small segment will emerge and that segment will then become very very सक्सेसफुल. अब सक्सेस का अपना रिलेटिव होता है हर इंसान का, बट दे विल दैट स्मॉल सेगमेंट विल बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल. सो इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पॉडकास्टिंग अब मैं देख रहा हूँ कि वी आर नाउ एंटरिंग अ न्यू एज वेयर वी विल ट्रूली बिगिन टू सी इनोवेशन एंड कंसोलिडेशन. अब थोड़े से प्लेटफॉर्म्स रह जाएंगे, बहुत सारे जो एवरीबडी हु इज़ नाउ कमिंग इन और एक ही फॉर्मेट जो चल रहा था ना वो फॉर्मेट के बस जी एक स्टूडियो बनाओ बैठो बातें करो और यू नो अल्लाह खैर से अल्लाह, वो रिडंडेंट होना शुरू हो जाएगा और आपको इनोवेशन की रिक्वायरमेंट होगी और आपको जो है वो यू नो इंटरेस्टिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉडकास्ट इमर्ज करेंगे. मैंने पहले भी मल्टीपल टाइम्स पे इसके बारे में बात की है जिसमें यू नो ऑल पॉडकास्ट डू नॉट हैव टू बी ए टू वे कॉन्वर्जेशन. यू कैन हैव सोलो पॉडकास्ट, यू कैन हैव पॉडकास्ट अराउंड हिस्ट्री कल्चर आर्ट, यू कैन हैव एपिसोडिक पॉडकास्ट, यू कैड हैव पॉडकास्ट जिसमें आप म्यूजिक को इंटीग्रेट करके एक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस बना रहे हैं, एक ऑडियो एक्सपीरियंस बना रहे हैं. तो अब होगा ये कि अब एक्चुअल में आर्टिस्ट टाइप पैशनेट बंदा आएगा और वो दुनिया भर की देखेगा कि कंटेंट पॉडकास्ट में किस तरह का हुआ है और फिर वो उसको यूज़ करके वो अपनी एक नीश में एक नई चीज़ क्रिएट करेगा. बट अब वो इस वजह से सक्सेसफुल होगा बिकॉज क्रिटिकल मास ने आके पॉडकास्टिंग को मेन स्ट्रीम कर दिया. एंड सो वी नाउ अबाउट टू एंटर द मोर एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट इंडस्ट्री वी आर डूइंग इंटरेस्टिंग न्यू इनोवेटिव क्रिएटिव थिंग्स विल बिगिन टू पे ऑफ. अच्छा, अब इसमें मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इमरान खान साहब की पॉडकास्ट की बात की थोड़ी देर पहले, भी मैंने जिक्र किया था इसका और अभी मैंने फिर किया कि हाउ इम्पॉर्टेंट दैट पॉडकास्ट वॉज फॉर द इंडस्ट्री एंड हाउ इम्पॉर्टेंट दैट पॉडकास्ट वॉज फॉर अस. पहले गोज विदाउट सेइंग मैं पहला क्लियरली बोल देता हूँ कि खान साहब का बहुत सीन है बिकॉज जितनी रिस्पेक्ट हमें उस पॉडकास्ट की वजह से मिली I didn't even know was possible. Puri duniya se logon ne would look at me, would meet me randomly. Grocery store pe khada hunga, ek boodhe uncle aa jayenge, boodhi khatoon aa jayengi ki ji aapne wo khan saab ka kiya tha, kaise hain wo, kya hai, aur bada acha aapne kiya. Ab maine realize kiya yaar mujhe kyun respect mil rahi hai, like maine kya chhat paadi hai, agar aap if they like that person. But wo unka ek aura aisa hai ki I will have to pray. Aap unko you like him or you don't like him, he is a phenomena. More so in today's day and age than maybe he was at the time, but it was incredible. Aur maine usme na wo galti se meri team ne wo dal diya tha. Normally hum dala karte hote the apna easy paisa ka number, to usme wo dal diya unhone, halanki maine mana bhi kiya tha us time pe. Wo usse hua ye ki because this podcast became super viral, to people from all over the world, unko laga ki ye khan sahab ka hi number hai. Sir main aapko mazak nahi kar raha, 2.5 mahine tak mera phone bajta raha WhatsApp uske upar, aur logon ke WhatsApp aate rahe ki khan sahab ye masla, khan sahab ke liye duaein, khan sahab this, khan sahab that. So that's crazy. I mean, I've never experienced anything like that, and I don't think I will ever experience anything like that. Again, you agree with him or you disagree with him, the guy is a phenomena, and unki apni matlab itni zyada unke liye logon ki respect hai ki jo unke sath appear bhi hota hai usko bhi log respect karte hain. And main bilkul isko kahunga ki just because of him we gained a ton of respect. Having said that, for the platform, while it was a great benefit and it was a great blessing in a way, it was also a huge curse. I would say main bada darte darte ye keh raha hu kyunki log isko bada emotionally ya personally le lenge, lekin wo ek curse tha, aur wo curse is wajah se tha because us podcast ki wajah se hum politicized ho gaye in a way. For some weird reason, having that pod, agar maine wo na ki hoti na to mujhe bahut kam khap sunne ko milni thi, jo ki mujhe baad mein aane wale waqt mein sunne ko mili from a lot of people. To hum politicized ho gaye in a lot of ways. Platform ye tha nahi, logon ki expectations humse badi different ho gayi. Logon ne jab dekha, bahut sare naya crowd aaya, usne aake us podcast ko dekha aur unhone hame ek dabbe mein dal liya. Unhone humse imagine kar liya ki hum ek एक्स वाई जी टाइप की पॉडकास्ट हैं और हम एक्स वाई जी टाइप का काम करना चाहते हैं. क्योंकि लोगों का जनरली खासकर जो नया आ रहा होता है ना, उसको सेंस नहीं होती कि एक्चुअल में एक इंसान किस सोच से आया है. तो लोगों की एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी जो है ना, वो बहुत आउट हो गई, और जिसकी वजह से मेरे लिए पर्सनली बताते खुद बड़ा मुश्किल हो गया था उसके बाद अपनी सिम्त दुरुस्त रखना और अपनी डायरेक्शन ढूंढना और अपने आप को रखना. एक तरफ मैंने आपको बताया वो क्रिटिकल मास इंडस्ट्री का हिट हो रहा है, सडनली कॉम्पिटिशन इज राइजिंग. दूसरी तरफ व्यूअर्स आके हर किस्म की चीज़ें कह रहे हैं कि यार ये कर लें, वो कर लें, ऐसी पॉडकास्ट करें, वैसी पॉडकास्ट करें. और आपको ना, हर बंदा जब हर तरफ से खींच रहा हो ना, तो यू दैन बिकम वेरी वेरी लॉस्ट. और वो चीज़ हमारे साथ बिल्कुल हुई ना. मैं जर्नलिस्ट था ना, मैं पॉलिटिक्स में इन द सेंस कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता था कि मैं उसमें घुस जाऊं और मैं उससे कोई हर इंसान की बुरी बात नहीं है, लॉजिकल बात है कि आप जब भी किसी चीज़ में घुसते हैं तो आपने उससे कोई रिटर्न एक्सपेक्ट करना होता है, राइट? सो या तो मैं पॉलिटिक्स में घुसता कि या पॉलिटिशियन से बातें करता और पॉलिटिक्स में घुसता और मैं वो वाइब पूरी बना लेता कि मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं. लेकिन मुझे वो चाहिए नहीं था, मैंने उस स्पेस में घुसना ही नहीं था. मैं पॉलिसी में हमेशा इंटरेस्टेड रहा हूँ, तो मैंने पॉलिटिशियन से ज़रूर बात की है पॉलिसी के ज़ुमरे में, लेकिन चूँकि उस टाइम के बाद से लेके अब तक पॉलिसी की तो बात ही नहीं हो रही ना, अभी तो बात सारी की सारी पॉलिटिक्स है, कौन सही कौन गलत, कौन चोर कौन डाकू, फॉर गुड और फॉर बैड रीजन, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई पर्सनली वाजंट द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो, वो पॉलिसी में इंटरेस्टेड था, विच इज़ वन ऑफ द रीजन्स व्हाई ये जो टाइम था वो मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद लॉस्ट होना शुरू हो गया, जो कि मेरी लॉस्टनेस फर्दर ग्रो की उस टाइम पे. तो हाँ, दैट वाज अ ह्यूज डील फॉर अस, फॉर बोथ गुड और फॉर बैड रीजंस, एंड आई थॉट कि मैं उसको आके शेयर कर दूँ. अच्छा जी, एक और सवाल उस पर यह आता है, और मैं कनेक्ट करूँगा विद खान साहब पॉडकास्ट. पिछले दिनों मैंने ईऑन पॉडकास्ट, ईऑन होल्डिंग्स ईऑन पॉडकास्ट की पॉडकास्ट देखी, बड़ी अच्छी पॉडकास्ट, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट इज इमर्ज्ड इन रीसेंट टाइम्स. उसमें जो उनके होस्ट थे वो कह रहे थे कि उन्होंने हमारा बेसिकली पॉडकास्ट का हवाला दिया, नाम नहीं लिया उन्होंने, बट जिसके बारे में बात हो रही होती है उसको पता होता है. तो उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि जी ये साहब जो है पता नहीं क्या कर रहे हैं, पेड पॉडकास्ट करते रहते हैं, सी ई ओज को बुलाते रहते हैं, स्टार्टअप्स को बुलाते रहते हैं, और एक टाइम पर उनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे थे, अब उनके 10,000 व्यूज़ नहीं आते, 15,000 व्यूज़ आते हैं, 10-15,000 व्यूज़ आते हैं, पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं. अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैंने खैर उसके नीचे कॉमेंट भी किया बड़े तरीके से. ये जो मैं कर्स की बात कर रहा हूँ ना, जो एक्सपेक्टेशन आपकी बदल गई कि हम तो यही थे, हम तो सीज़न वन से यही थे, हम तो कर ही काम रहे थे कि हम स्टार्टअप से बात कर रहे हैं, हम बिजनेसेस से बात कर रहे हैं, हम यू नो वी वर डाइवर्सिफाइंग द कॉन्वर्जेशन दैट वर बीइंग हैड इन पाकिस्तान. अगर आप व्यूज़ के पीछे जाएंगे तो आप डाइवर्सिटी तो नहीं ला सकते, आपने तो नई चीज़ इमेजिन करनी है, नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है. लेकिन पाकिस्तान में उस टाइम के ऊपर पर्टिकुलरली, एक तो हमारी एक्सपेक्टेशन के यार, चूँकि वो दरमियान में कुछ पॉडकास्ट थोड़ी ज़्यादा चली गई तो वो बेंचमार्क बन गया कि यार ये लोग तो वो लोग हैं जो कि इतने बड़े लेवल के लोगों को ला सकते हैं और इतने बड़े लेवल के व्यूज़ खींच सकते हैं. तो एक तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई और लोगों को लगा कि हम पेड कर रहे हैं. हालांकि हम तो सीज़न वन से इसी किस्म के लोगों को ला रहे हैं और सीज़न वन में उनको 250 व्यूज़ मिल रहे थे, अब अगर 10-15 हज़ार व्यूज़ मिल रहे हैं तो हमारे लिए विन है. लेकिन अगेन लोगों का परसेप्शन बिकॉज ऑफ दैट इवेंट हमारे बारे में फ़र्क था और उन्होंने फिर बहुत सारी बातें करना शुरू कर दी और फिर व्यूअर्स ने उसको उसके ऊपर बहुत सारी बातें करना शुरू कर दी. तो दैट बिकेम फेयरली कॉम्प्लिकेटेड. बट इन टर्म्स ऑफ व्हाई, येस आई वुड से दैट वी हैव, जो हमारी व्यूअरशिप थी, जो सीज़न 3 की व्यूअरशिप थी जिसमें हम ऑलमोस्ट 40-50,000 नेट कर रहे थे पर एपिसोड, वो कम हो के 10-15 हज़ार नेट पर आ गई बारिंग अ फ्यू एपिसोड्स. उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में आपने ये देखना होता है, देखें कोई भी जो प्लेटफॉर्म होता है, कोई भी जो पॉडकास्ट होती है, कोई भी जो कंटेंट होता है, वो आइसोलेशन में नहीं काम करता, वो एक सोसाइटी के अंदर होता है और सोसाइटी की जो नीड्स वांट्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसके अराउंड ऑपरेट कर रहा होता है. पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान की जो नीड्स वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स रही हैं ना, इकॉनमी तबाह हुई भी है, पॉलिटिक्स इंतहा ज़्यादा बुरी है, एक एनवायरनमेंट ऑफ नेगेटिविटी है, एक एनवायरनमेंट ऑफ खप है. अब इसके अंदर अगर आप आते हैं और आके कहते हैं कि यार, पहली बात अगर आप ये आके बोलते हैं कि बिजनेस करो, ये करो, वो करो, तो अगला कह रहा है कि भाई मेरे पास रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तुम आके मुझे कह रहे हो कि यार स्टार्टअप करो या ये बिजनेस करो या कुछ प्रोडक्टिव करो अपनी ज़िंदगी से, तुम लाइक इट साउंड्स टोन डेफ, इट साउंड्स कन्फ्यूजिंग, इट साउंड्स फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी इज नॉट कंड्यूसिव फॉर पीपल टू मेक एन एफर्ट. ये वो टाइम ही नहीं है एफर्ट करने का, ये टाइम है सर नीचे रखने का. आज मुझे कोई कहता है यार मैं अपने 40 लाख रुपए में बिजनेस करूंगा, तो मैं ऑनेस्ट टू गॉड ये कहूंगा कि भाई तू ना कर अभी बिजनेस, लेट द मैक्रो स्टेबलाइज इट सेल्फ, देन यू डिसाइड टू डू अ बिजनेस. सो ऑब्वियसली क्योंकि मेरा जो कोर कॉन्टेंट था वो वॉज कवरिंग स्टोरीज अराउंड इकोनॉमी, बिजनेस, स्टार्टअप्स, सीरियस स्टफ, राइट? सो अंडरस्टैंडेबली ऑडियंस की व्यूअरशिप कम होनी थी क्योंकि ऑडियंस वॉज नॉट गोइंग टू कनेक्ट. अगर मुझे व्यूज चाहिए थे तो मुझे, और मुझे ये मालूम था कि मैं बड़ा इसके ऊपर एनालिसिस कर चुका हूँ, अगर मुझे व्यूज़ की गेम खेलनी होती तो मैं पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करता, मैं ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर फोकस करता, मैं जाता, क्योंकि फॉल्ट लाइंस हैं ना, कुछ फॉल्ट लाइंस हैं जो कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनी हुई है. बांग्लादेश में क्या हुआ, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसके बारे में डिस्कशन कर लो. इकोनॉमिक्स का रोना पीटते रहो कि यार हालात ख़राब हो रहे हैं, तबाही मचने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, कर ली हमने 2-4 एपिसोड्स कर ली, बट उसको बार बार करने का कोई फ़ायदा नहीं था. तो इट वॉज अ वेरी कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियसली आई कुड सी कि द व्यूज़ वर गोइंग डाउन. मेरे लिए वो चॉइस थी कि क्या मैं अपना फ्लेवर या ब्रांड चेंज करूं और मैं इस वक्त जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, विच इज़ अ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट बाय द वे, इट्स लाइक अगेन वो 12-18 महीने की रिक्वायरमेंट है, वो वापस जब मार्केट स्टेबलाइज होगी, नॉर्मलाइज होगी, तो वो रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी. फ़र्क ये है कि अलॉट ऑफ पीपल जो कि इस वक्त अपने आप को व्यूज़ की खातिर अपनी ब्रांड एक्विटी लूज़ कर जाएंगे, वो उनकी लॉस्ट रहेगी इन द फ्यूचर एज वेल. सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई थॉट यू नो आई विल नॉट चेंज एंड पिवट एंड स्विच. तो एक तो ये एलिमेंट था कि एक एनालिसिस था जो मुझे बता रहा था और जिसकी वजह से आई चोज टू कीप माई ब्रांड एंड कीप द कॉन्टेंट दैट आई जनरली डू, इवन दो आई न्यू कि मेरी जो कोर ऑडियंस है वो उसको नहीं सुनना चाह रही. और मेरी थॉट उस वक्त ये थी कि ये इस वक्त मैं ये कर रहा हूँ और ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ. सीज़न 1-2 में जब मैंने किया था तो मैं बहुत सारा कंटेंट ऐसा करता था कि लोग आ कहते थे ये आप क्या बातें कर रहे हैं, कि अरे ऑडियंस को सेंस ही नहीं थी. और जब सीज़न 3 में हम वापस सेट हुए और नैरेटिव सेट हुआ तो पब्लिक ने वापस जाके वो कंटेंट देखा और उसको बहुत अप्रिशिएट किया. तो मुझे कैटलॉग का सेंस थी कि यार जो कंटेंट मैं करके डाल रहा हूँ वो फ्यूचर में लोग देख लेंगे जब फ्लिप होगा नैरेटिव. तो एक तो ये एलिमेंट था, बट दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये था कि यार मेरा पर्सनल, मैं पाकिस्तान से बहुत नाला हुआ था उस टाइम के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान डिडंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. द पाकिस्तान दैट आई फील लाइक वी न्यू ग्रोइंग अप, चाहे वो हमारी इग्नोरेंस थी, चाहे हम बेवकूफ़ थे, जो भी था, वो पाकिस्तान अब नहीं हमारे सामने पाकिस्तान था. और मेरा दिल भी टूटा था और आई फेल्ट बिट्रेड एंड आई फेल्ट, तो मेरा दिल ही नहीं था. और फिर चूँकि मेरा सारा कंटेंट, मेरी सारी थॉट, मेरा सारी सोच जो थी वो पाकिस्तान सेंट्रिक थी और पाकिस्तान के बारे में थी, और वो पाकिस्तान जो था ना वो क्रम्बल होके 1000 pieces में आ चुका हुआ था. तो आई हैड टू टेक सम टाइम टू पुट इट ऑल बैक टुगेदर. बट आई हैड टू मेक श्योर कि मेरा जो शो चल रहा है वो चलता रहे. तो मुझे इन अ लॉट ऑफ वेज जो ये पिछला सीज़न रहा है इसमें बहुत अच्छे गेस्ट्स आए हैं और इसमें कुछ एपिसोड्स खैर वाकई मज़ा मुझे भी आया, बट लार्जली मेरी सोल ही नहीं थी उसके अंदर. और चूंकि मेरी सोल नहीं थी तो वो रिफ्लेक्ट हुई मेरे सवालात में, वो रिफ्लेक्ट हुई मेरी थाट्स में, वो रिफ्लेक्ट हुई किस तरीके से मैंने उसको चलाया है. तो ये एक बहुत मेजर रीज़न था जिसकी वजह से आई फील लाइक द कॉन्टेंट वाजंट गुड इनफ इन द लास्ट सीज़न. और जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब ऑथेंटिसिटी मिसिंग होती है तो वो कंटेंट उतने वैल्यूएबल होता ही नहीं है, और जब उतना वैल्यूएबल नहीं होता तो ऑटोमेटिकली व्यूज़ डाउन होते हैं. जिसपे काफ़ी लोगों ने बोला कि गेस्ट्स का मसला था, गेस्ट्स अजीब हो गई हो गया, बट दैट्स नॉट ट्रू टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये होस्ट के ऊपर होता है कि वो हर इंसान से क्या वो फ्लेवर क्या कॉन्वर्जेशन निकाले. तो वो गलती मेरी थी जो कि मैंने आपको बता दिया कि बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ मेंटल barriers and things that I was going through because of what was happening around me, and not just in Pakistan, right? Look at what's happening in Palestine and Gaza, look at what's happening in the economy of the world. Like the world doesn't make any sense. It looks like a mad world. It looks like a sitcom right now. Everything that we thought was not possible, wo ho rahi hai. And every understanding of the world that we had, kuch hamari ek sense thi, kuch social construct tha, kuch social contract tha, kuch bhi nahi hai sir. It's a might is right, not just in Pakistan, all over the world. And so, ek naya understanding bana rahe, to be very honest. So, usme phir zahir hai ke I was confused, and that confusion very clearly showed on the podcast as well. And it took me an entire year, like I would say December mein jaake mujhe, finally I was able to go back to the sort of person that I was. Maine wo wapas apne aap ko set kar liya. But zahir hai ke show chal raha tha, so I... मैंने लिटरली लास्ट 10-15 एपिसोड्स बस रिकॉर्ड की निकाली ताकि आई टेक अ ब्रेक ऑफ अ मंथ और सो एंड रीडिज़ाइन व्हाट आई वांट टू डू. सो एनीवेज एक दूसरा रीज़न ये था कि मेरी अपनी जैसे कहते हैं कि गलती थी या अपनी शॉर्ट कमिंग्स थी जिसकी वजह से द क्वालिटी ऑफ द कॉन्टेंट रिड्यूस्ड एंड जिसकी वजह से द व्यूअरशिप रिड्यूस्ड. तीसरा एक एलिमेंट छोटा सा है उसको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि खान साहब की पॉडकास्ट ने एक गलती एक और जो कर्ज दिया वो ये दिया कि उससे पहले लोग मेरे पास आते थे और मैं एक बच्चा था और मैं एक लैंडम लड़का था और मेरे पास वो बड़े सुकून में आते थे और वो आके बैठते थे और मेरे से ऑथेंटिक बात करते थे और सीधी बात करते थे और कोई टेंशन वेंशन नहीं होती थी कि यार यू नो मतलब प्लेटफॉर्म वाजंट बिग इनफ सो दे वर ऑल्सो वेरी वेरी केयरफ्री. खान साहब की पॉडकास्ट के बाद मैंने नोटिस करना शुरू किया कि मेरे पास जो गेस्ट आ रहा था वो बहुत इंटिमिडेटेड होकर आ रहा था कि यार ओ माय गॉड पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं, यहाँ तो खान साहब भी आए हैं टाइप, इस तरह की थॉट प्रोसेस था. दूसरा मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो स्क्रिप्ट होकर आना शुरू हो गया, वो बहुत टेंशन में हो गया कि मैं सही बात बोलूँ मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, हमसे सवाल आना शुरू, के सवाल भेज दें क्या पूछेंगे यार, मतलब कॉन्वर्जेशन है सवाल कौन निकालता है पहले. वो नज़र आ रहा था कि मैं एक सवाल करता नहीं था और उन्होंने फॉर्मेट निकाला हुआ था कि ये पॉडकास्ट जो है ना इसमें ये अर्ली लाइफ निकालेंगे फिर ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे. वो शुरू होते थे और वो अगले दो घंटे बोलते चले जाते थे क्योंकि उन्होंने पूरी प्रेप की हुई होती थी, जिसकी वजह से जो सोल थी ना, जो ऑथेंटिसिटी थी ऑफ द पॉडकास्ट, दैट लेफ्ट और इट वॉज जस्ट अ फार्मूला जो हर बंदा आके निकालना शुरू हो गया. और वो फिर जाहिर है कि वो फार्मूला वो मुझे भी नज़र आ रहा था, मुझे खुद नहीं मज़ा आ रहा था उस पॉडकास्ट के अंदर कि यार ये क्या चल रहा है, ये चूना लगाया जा रहा है जनता को, मुझे भी लगाया जा रहा है जनता को भी लगाया जा रहा है. तो वो एक मेजर रीज़न था और मैं बहुत ऑनेस्ट टू गॉड कहूँगा मैं भी सीखा हूँ, मैंने भी अपने आप को एजुकेट किया है, मुझे भी अब मैं भी बेवकूफ़ नहीं रहा. बहुत सारा गेस्ट आया है चूना लगा कर गया, मैं ऑनेस्ट टू गॉड आपको बता रहा हूँ बहुत सारा गेस्ट आया चूना लगा कर गया. बहुत सारा बंदा बिजनेस, आप लोग, मैं नाम नहीं अब लेना चाहता लेकिन एक साहब आए आके उन्होंने अपने पूरे बिजनेस बहुत बड़ी कंपनी के बारे में बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बिजनेस बना के बेचा कि जी हमने ये कर लिया वो कर लिया वो कर लिया, वो दो तीन हफ्ते पुरानी बात है आप जाके गूगल करके देख लीजिएगा. तो उनको फायर कर दिया था, उन्होंने रिज़ाइन किया बट एक्चुअली उन्हें फायर कर दिया था, बहुत मैसिव फ्रॉड निकला उनकी कंपनी में जो कि उन्होंने किया और वो हमारी पॉडकास्ट पर चूना लगा कर गए. तो मुझे ये भी चीज़ बड़ी खलना शुरू हो गई थी बिकॉज नाउ आई कुड नाउ सी. और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जो ये फ्रॉडी है ना, जनरली ये फ्रॉडी बहुत अच्छा बोलते हैं, इनको बोलना बड़ा अच्छा आता है, वो इसी वजह से फ्रॉड भी अच्छा कर लेते हैं. तो ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा वायरल वीडियोज़ भी होती हैं ना वो फ्रॉडियों की सबसे ज़्यादा होती हैं अनफॉर्चुनेटली. तो फिर एज समवन हू इज़ प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म, मैंने बड़ा सोच सेकंड गेस करना शुरू कर दिया कि यार क्या मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो बड़ा एक दोसाइल सा तमीज़दार प्लेटफॉर्म था, मैं लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ आओ कहानी सुनाओ मासेस को रीच आउट करो. बट जब मुझे नज़र आ रहा है कि यार लोग चूना लगा रहे हैं, लोग मेरे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं पोटेंशियली अगले को चूना लगाने के लिए, तब फिर मैं बहुत आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ एंड सेकेंड गेसिंग माई सेल्फ तो वो भी एक वजह थी कि गेस्ट्स ने स्क्रिप्टेड होना शुरू हो गए, इनऑथेंटिक होना शुरू हो गए, फार्मूला बना लिया, और ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हैज बिन द रीज़न व्हाई द लास्ट सीज़न वाज़न्ट गुड इनफ फॉर एटलीस्ट फॉर मी. आई डिडंट लाइक इट, आई डिडंट एंजॉय इट. इन टर्म्स ऑफ द व्यूअरशिप वो भी नज़र आया कि व्यूअरशिप भी डिप की, और ऑलरेडी मैंने ये सोचा हुआ था कि अब जो है ना मैं इस एपिसोड को, जब ये मेरी फाइनल एपिसोड आएगी, आई एम गोना टेक सम टाइम एंड आई एम गोना टू रेडिकली रीडिजाइन द मॉडल ऑफ द पॉडकास्ट. क्या होगी, कैसी होगी, किस तरह के लोगों से मैं बात करूँगा, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई क्रिएट अ मॉडल जिसमें मैं ऑथेंटिकली मैं हूँ, जो मैं था, जो मैं करना चाहता हूँ, चाहे वो स्टूपिड दिखे, चाहे वो फूलिश दिखे, चाहे जो ये इंपॉर्टेंट गेस्ट्स हैं वो ना आना चाहें इसके ऊपर, बट आई एम गोना डू व्हाट आई वांट, व्हाट आई फील लाइक डूइंग. आई एम गोना डू व्हाट इज इनहेरेंटली मी बिकॉज दैट इज व्हाट द ऑडियंस लाइक्ड थ्रू आउट ऑल दिस टाइम. सो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज कमिंग एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम सिटिंग हियर एंड हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू गाइस एज वेल. और अगर मैं उस चेंज की बात करूँ, जो मैं अगर मैं मॉडल की बात करूँ, तो अभी हमारा मॉडल ये होता था कि हम आते थे, हम ह्यूमनाइज करते थे, जो मैंने पहले आपको बताया. हम आके लोगों से कहते थे कि यार अपनी अर्ली लाइफ बताएं, फिर हम उनकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को समझते थे, फिर हम आखिर में आके फलसफे की बात करते थे और कुछ मुकालमा होता था. अब ये है कि वर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम दी अर्ली लाइफ, एंड पहले जो दो ढाई तीन घंटे की हम पूरा एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते थे वो नहीं होगा, क्योंकि अब लोगों ने उसमें चूना लगाना शुरू कर दिया, तो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता कि वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. तो अब इट विल बी मोर लाइक अ ठक करके कॉन्वर्जेशन होगी, और कॉन्वर्जेशन ही होगी. और अब जो है वो मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैंने लर्न की हैं, जो चीज़ें मैं समझ गया हूँ कि यार ऐसा है और ऐसा नहीं है, तो अगर गेस्ट आएंगे और वो आके प्रॉब्ली मैं कहूँगा इट विल बी अ लॉट मोर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल इन अ रिस्पेक्टफुल वे. ऑब्वियसली आई डोंट वॉन्ट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल बिकॉज देर आर पीपल आउट देर जो कि जिनका फॉर्मेट वो है, उनको पसंद होगा, पब्लिक को पसंद होगा, मुझे जनरली उस तरह का पसंद नहीं है. रिस्पेक्ट आई थिंक इज पैरामाउंट इन दिस इंडस्ट्री, बट आई विल डेफिनेटली स्टिल बी क्रिटिकल. एंड क्रिटिकल वॉट दैट मीन्स इज कि आप क्रिटिकल हो और आप दूसरे बंदे को राइट ऑफ रिस्पॉन्स पूरा का पूरा दो, और आप बदतमीजी ना करो, और आप पर्सनल ना हो, बट आप जो है वो सवाल उनसे ज़रूर करूँ. और मैं ख़ासकर जो गेस्ट्स, आने वाले वक्त के गेस्ट्स हैं और जो व्यूअर्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, सवाल करना बदतमीज़ी नहीं है. बदतमीज़ी आपके अखलाक में आ जाती है, बदतमीज़ी इस तरह आ जाती है, आप बार बार उनको इंटरप्ट कर रहे हैं, आप उनको सबड्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सवाल करना बदतमीज़ी नहीं है. पाकिस्तान में एक ये भी नैरेटिव है कि जैसे ही आप किसी को सवाल करते हैं ना, क्रिटिकल होते हैं, कहते हैं ये तो आप, आई फील लाइक आप चूना लगा रहे हैं. अगर आप बदतमीज़ से आगे कहो ना कि सर आपकी बात मैंने समझ ली, पर मुझे लग रहा है आप चूना लगा रहे हैं, तो लोग कहेंगे आपने बदतमीजी कर ली. आपने बदतमीजी नहीं की भाई, आपने उनको कहा कि मुझे लग रहा है आप चूना लगा रहे हैं. अब उनके पास पूरा राइट वो है कि वो अपने आराम से उसको बैठ के डिफाइन करेंगे कैसे वो चूना नहीं लगा रहे. एंड दैट इज़ अ गुड कॉन्वर्जेशन, दैट इज़ अ कॉन्वर्जेशन जो 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 डेप्थ बढ़ा रही है डिस्कोर्स की. अभी हम बस सरफेस लेवल पर रह गए हैं, जिसमें बस मोटी मोटी अच्छी प्यारी बातें करके हम आगे नहीं जा पा रहे. तो खैर एनीवेज, इस वक्त जो मॉडल है ना, इट्स अ बिट टू स्वीट, इट्स अ बिट टू नाइस, एंड इट्स नॉट इंक्रीजिंग द क्वालिटी, द डेप्थ ऑफ द डिस्कोर्स, इट्स नॉट इंक्रीजिंग वैल्यू, इट्स नॉट इंक्रीजिंग नॉलेज. तो उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, और ख़ासकर जो लोग, जो गेस्ट्स हैं जो आने वाले वक्त में, ख़ासकर जो हमें भी डिफरेंट एजेंसीज रीच आउट करती हैं, क्योंकि उनके पास डिफरेंट कॉर्पोरेट होती हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो कहते हैं कि यार हमारा ये एक्स वाई जी बंदा है, ये आपकी पॉडकास्ट पे आना चाहता है. तो अगर आप उनमें से कोई हैं, तो बराहे करम इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि अब अगर वो आ रहे हैं, तो वो पुराना मॉडल जो देख के आपने, आप भेज रहे हैं ना, वो आके सरप्राइज होंगे. तो जस्ट मेक श्योर कि आपको पता हो कि हमारा मॉडल बदल रहा है. अच्छा, थोड़ा सा मैं ना पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहता हूँ. आने वाले वक्त में इलेक्शंस भी आ रही हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो डिस्कोर्स है वो पॉलिटिक्स के ऊपर है. कुछ चीज़ें हम कह नहीं सकते, अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ वियर्ड टाइम, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट पाकिस्तान इज़ बाय एंड लार्ज आर डिस्पोंडेंट, पाकिस्तान इज़ बाय एंड लार्ज आर डिप्रेस्ड. आई डोंट नो इफ आई कुड यूज़ दैट वर्ड, बट वो चाहे पीटीआई को सपोर्ट करते हों या ना करते हों, वो जो भी करते हो ना, वो जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात देख रहे हैं ना, उसको देख के इट डज़ नॉट इंस्पायर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. लेट मी से दिस, आई एम नॉट अ पीटीआई सपोर्टर एट दिस पॉइंट इन टाइम, और आई एटलीस्ट आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ पीटीआई सपोर्टर. आपने जो करना है पीटीआई के साथ, आप करें, तबाह करें उनको, जो भी करना है करें, आई डोंट केयर. बट आप जो कर रहे हैं ना इस वक्त मुल्क के साथ, वो सबको नज़र आ रहा है. हम जिस एज में हैं उसमें मीडिया सामने है, ट्विटर एग्जिस्ट करता है, सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है, टिकटॉक एग्जिस्ट करता है, सर सब कुछ नज़र आ रहा है, और उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली जो नौजवान है ना वो एक जिंदा लाश की तरह रह रहा है। जितना मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया ना पाकिस्तान में, वो इतना स्ट्रेस है उनको, इकोनॉमी के हालात, चाहे आप जितना भी उसको सेल कर लें, इट्स नॉट गुड। दी इन्फ्लेशन इज़ क्रेजी, द रियल इनकम ऑफ पीपल हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। लोगों को नहीं समझ आ रही कि क्या करें। आज से दो साल पहले लोगों का ख्वाब था, लोग ख्वाब देखते थे हम ये करेंगे हम वो करेंगे, इस वक्त लोग सर्वाइव कर रहे हैं। और एक अनफॉर्चुनेटली एक एलिमेंट है पाकिस्तानियों का जिसमें ना वो होपलेस होना शुरू हो गए, एंड दैट आई फाइंड। और मैं इस वजह से कनेक्ट कर सकता हूँ बिकॉज पिछला एक साल मेरा भी ऐसा ही गुजरा है, एंड उस चीज़ को देख के ना मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई बीन अ सर्टन सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, आई ड्रिवन माई एनर्जी फ्रॉम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और ट्राइंग टू बी प्रोडक्टिव इन अ वे के यार इंसान को ना हर मोमेंट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखनी चाहिए, उसको उसको डिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए इन अ वेरी लॉजिकल वे, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, एंड एज लॉन्ग एज यू आर फोकस्ड ऑन दैट, तो दुनिया में लेफ्ट राइट क्या आप जो भी हो रहा हो उसको इग्नोर कर सकते हो। बट अगेन लाइक आई सेड, आई थिंक मे बी द चेंज वॉज टू ड्रास्टिक, आई थिंक द चेंज वॉज सो फंडामेंटल इन अ लॉट ऑफ द फंडामेंटल बिलीव्स कि लोगों की जो बुनियादें थी वो शेक कर गईं। बट द वे दैट आई सी पाकिस्तानीज टुडे, पर्टिकुलरली द यंग पीपल, आई फाइंड देम टू बी वेरी होपलेस एंड आई फाइंड दैट टू बी वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड सो व्हेन इट कम्स टू व्हाट आई वांट टू डू विद द टीबीटी सीजन 5, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांट टू फोकस अ लॉट लेस ऑन पॉलिटिक्स। टीबीटी सीजन 5 की अगर मैं बात करूँ, आई डू वांट टू फोकस अ लॉट ऑन, एंड आई नो दैट पीपल डोंट लाइक इट राइट नाउ, बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग डिसअपॉइंटेड हैं, डिसहार्टेंड हैं, होपलेस हैं, तो उनसे कोई अगर कोई उनको सीधी सी पढ़ी लिखी बात बताई भी जा रही है ना तो उसको नहीं सुन रहे। बट देखें, सियासत में ना आप हार्ड पावर से नहीं लड़ सकते, जिसने जो करना है उनको करने दें। हो सकता है, मैं नहीं कहता वो बुरे लोग हैं, हो सकता है वो कर जाएं जो वो करना चाहते हैं, पर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उस आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, वोट डालने चले जाइएगा, उसको मैं नहीं रोक रहा, पर सुबह शाम उसके बारे में बात करना, उसके बारे में उसकी बेसिस के ऊपर ये डिफ़ाइन करना कि आगे अच्छे हालात आएंगे या बुरे हालात आएंगे, आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। मैं आने वाले वक्त में कुछ और वीडियोज़ में मैंने प्लान की हुई है जिसमें मैं कुछ आपको एक मैक्रो पिक्चर देना चाहता हूँ, जिससे आपको ये समझ आ जाएगी कि यार आपका सोचने से, आपका कुछ करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा? इस डाउन टाइम में ना आप, क्योंकि अप टाइम में ये होता है कि हर बंदा छलांगे लगा रहा होता है तो उसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है। डाउन टाइम में उस अप टाइम में ना आप फोकस नहीं कर सकते अपनी बुनियादें खड़ी करने में, तो इस टाइम के ऊपर आप बुनियादें बना सकते हैं। और वो बुनियादें क्या हैं? जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी बुनियादें ये हैं कि वो अपने आप को एजुकेट करें, वो अपने आप को अपस्किल करें, वो अपने आप को वो फोकस करें उन चीज़ों के ऊपर जिससे वो अपनी ओवरऑल ज़िंदगी बदल सकते हैं। पाकिस्तान बदले या ना बदले, उनकी कम्युनिटीज़ बदले या ना बदलें, वो अपने आप को कैसे बदल सकते हैं। और उसके लिए मैं चाहता ये हूँ कि जो मॉडल मैंने अब क्रिएट किया है उसमें इट्स गोना बी इन पाकिस्तान एज वेल, बट इट्स गोना बी अक्रॉस इन मेनी डिफरेंट एरियाज़। इट्स गोइंग टू गो टॉक टू पाकिस्तानीज, इट इज़ गोइंग टू एक्सप्लोर कि दुनिया में क्या चल रहा है। मैं चाहता ये हूँ कि पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से निकल के थोड़ा दुनिया को देखें, दुनिया को समझें, अपने लोगों के थ्रू, अपने पाकिस्तानियों के थ्रू वो दुनिया की सेंस लें, वो दुनिया की अंडरस्टैंडिंग लें और वो अपने आप को ग्लोबलाइज करें। मैं पूरी एक एपिसोड करूँगा इकॉनमी के ऊपर, बट पाकिस्तान की इकॉनमी का सर एक ही मसला है सबसे बड़ा, और वो ये है कि यू आर नॉट अ ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी, ना आप ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से चल रहे हैं, आप एक कंट्रोल ट्रेंड सीकिंग इकॉनमी है, और आप बहुत जल्द ग्लोबलाइज होंगे, और फिर जब होंगे तो आपको लग पता जाएगा। आपने डॉलर्स में कमाना है, आप चाहें या ना चाहें आपने डॉलर्स में कमाना है। लोग इसके ऊपर बहुत शोर डालते हैं कि यार मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, तो भाई मुल्क में जो 25,000 रुपया कमा रहा है ना बैठा हुआ, वो अगर बाहर जाके $1,000 भी कमाता है या वो $2,000 कमा रहा है, 1,000 खर्च करके वो 1,000 अपनी फैमिली को भेज रहा है, तो वो अपना भी भला कर रहा है और वो अपनी फैमिली का भी भला कर रहा है। तो देर इज़ एब्सोल्यूटली नथिंग रॉन्ग विद दैट, एंड ये जो आपको कॉन्स्टेंटली बताया गया जिसकी वजह से आप अपने कुएं से निकल ही नहीं पा रहे, तो आई वॉन्ट के थ्रू दिस शो आई एम एबल टू शो केस कि लोग किस तरीके से पाकिस्तानी क्या क्या अमेजिंग चीज़ें कर रहे हैं, और वो अमेजिंग चीज़ें कोई बहुत बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि यार मैं दुबई में अब किसी खुश टैक्सी ड्राइवर से बात करूँ, कैसे टैक्सी ड्राइवर से जो कह रहे हैं, क्योंकि मैं मिला ऐसे लोगों से, मैं एक टैक्सी ड्राइवर से, मैं बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर से मिलता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ आपकी मंथली इनकम क्या, वो कहते हैं 3,000 दिरहम। 3,000 दिरहम यानी कि 2,40,000 रुपये। मैं कहता हूँ आप खुश हैं, वो कहते हैं जी बेहद खुश हैं, हम इधर ही रहना चाहते हैं, पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। क्या वजह है, सोचें ज़रा, अपने मुल्क छोड़ के अपनी फैमिली से दूर। दिमाग तो ये आता है कि यार ये बेचारा कितनी मेहनत मशक्क़त कर रहा है, यहाँ पर कितना ख्वार हो रहा है ताकि फैमिली वहाँ पर अयाशी करे, बट वो भी खुश है, मैं उससे भी बात करने जाता हूँ, मेरे लिए वो सक्सेसफुल है क्योंकि वो खुश है, राइट? सो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम आई वॉन्ट टॉक टू पीपल, टॉक टू पाकिस्तानीज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगेन गो बैक टू द रूट ऑफ TBT, सक्सेस इज नॉट जस्ट मॉनिटरी, सक्सेस इज नॉट जस्ट यू नो बिजनेस स्टार्टअप्स दिस और दैट, सक्सेस इज ऑल्सो कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपनी एम्पावरमेंट में किस तरह सक्सेस लेता है। बहुत से लोग हैं वो पाकिस्तान से निकलते हैं, वो दुनिया घूमते हैं, उनकी वो सक्सेस होती है। बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में रहते हुए वो बाहर की खप को ख़त्म करते हैं और वो कुछ अपनी हॉबीज़ पे फोकस करते हैं या अपने छोटे से किसी काम पे फोकस करते हैं, उसको सक्सेसफुल करते हैं और वो उनके लिए सक्सेस होती है। आई वॉन्ट कवर मोर ऑफ दोज स्टोरीज, आई वॉन्ट टॉक टू मोर ऑफ दोज पीपल, एंड पर्टिकुलरली आई वॉन्ट टॉक अ लॉट मोर अबाउट फिलोसफी, बिकॉज इन दीज टाइम्स, इन टाइम्स ऑफ अनसर्टनटी, आई फील लाइक के फेथ हेल्प्स यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स that you know conventional sciences fail to communicate, right? Because you know, so I wanna focus a lot more on philosophy, I wanna focus a lot more on Islam, particularly religion, and I wanna talk to people about religion. Ab in do areas mein maine iske bare mein kyun mention kiya, kyunki ye contentious area hai, iske upar मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा और मैं लॉजिक के पीछे जाऊंगा, काउंटर क्वेश्चन करके मैं समझूंगा। मैं ये नहीं हो सकता कि मैं कोई बंदा मुझे बोले, मैं कहूं अच्छा सर आपने ये बोल दिया तो अब मैं आपकी बात मान लूंगा। मैं सवालात के काउंटर क्वेश्चंस करूंगा, इसका मकसद ये नहीं है कि मैं उसको गलत प्रूव करना चाह रहा हूं, इसका मकसद ये है कि मैं अपने क्वेश्चंस को आंसर, मैं जो कन्फ्यूजन है उनको आंसर करना चाहता हूं। तो उसके ऊपर जो मुझे एक हमेशा डर रहा है कि यार फिर लोग आएंगे खप डालेंगे, खुदा का वास्ता है वो खप ना डालिएगा, बट वी आर गोना बी सीइंग अ लॉट मोर ऑफ दैट एज वेल। इसके अलावा वी आर गोइंग टू बी क्रिएटिंग, एटलीस्ट जो मैंने भी आपको बात बोली ना कि पीपल हु डोंट केयर अबाउट द पॉलिटिक्स एंड हु आर फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग और एलिवेटिंग देयर लाइफ टू बी अ बेटर लाइफ, टू जस्ट लिव इन अ बेटर वे, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या सोशली हो, आई वांट टू बिल्ड दैट कम्युनिटी ऑफ पीपल जो कि नेगेटिविटी से दूर हट कर कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ एम्पावरिंग करना चाहते हो, तो आई वांट बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ दोज पीपल, आई वांट बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ दैट व्यूअर जो कि वो कर सके, क्योंकि मैं खुद ये कर रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द कप ऑफ पाकिस्तान, एंड आई वांट टू कनेक्ट माई सेल्फ टू द पॉजिटिव्स ऑफ पाकिस्तान एंड द पॉजिटिव्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई वांट टू चैनल दैट एनर्जी, टेक दैट पॉजिटिव एनर्जी एंड सी इफ आई कैन एलिवेट माई ओन सेल्फ एंड देन बाई प्रॉक्सी ऑफ दैट एलिवेट माई ऑडियंस एज वेल। सो आई वांट बिल्ड दैट कम्युनिटी, and we're also creating a platform at thoughtbehindthings.com. We've hired a very phenomenal agency for that, and that's going to be launched with season 5 as well, aur usme badi interesting cheeze honge, we'll talk about that later. I'm going to wrap this up, but I want to talk about this medium that you are seeing right now, which is basically this new thing that I want to do. Like I said in the very start, I don't get a lot of opportunity to talk to you guys, and kyunki badi der ho gayi, something aate aate मेहमान आते आते, एनीवेज बहुत अरसे बाद में आया हूँ और मैंने आके यू नो आई एम हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ वन ऑन वन विद यू, बट आई वांट टू मेक दिस अ थिंग, एंड सो दिस इज अ सेगमेंट, इवन दो टुडे इज कमिंग आउट एज अ पॉडकास्ट, इट्स अ 400th पॉडकास्ट ऑन TBT, बट ये अब एक एक्टिव थिंग मैं करने जा रहा हूँ, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। आई गिवन माई सेल्फ अ चैलेंज वेर आई एम गोइंग टू बी डूइंग दिस एवरी डे, एंड आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल टॉपिक ऑफ अप टू 20 to 30 minutes, नॉट मोर देन दैट होपफुली, एंड यू नो वी गोना टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मैंने टॉपिक्स बहुत सारे निकाल के रखे हैं, बट यू गोना स्टार्ट सीइंग दैट। सो दिस वन इज कमिंग आउट ऑन ट्यूजडे विच इज द 30th ऑफ जनवरी, एंड एवरी डे आफ्टर दिस you're going to be seeing a new episode. I'm going to be talking about a bunch of things. So stay tuned for that. It's called Dil Ki Baat because it is my Dil Ki Baat. Yahan par main bahut khulle mein baat karunga. मुझे अगर कुछ नहीं सही लगेगा तो मैं वो भी बताऊंगा। मैं एक बहुत सिंपल लॉजिकल आदमी हूँ, मैं ज़्यादा इमोशन से नहीं सोचता, मैं चीज़ों को लॉजिकली डिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ईमान है कि बहुत सारे लोग ऑफेंड होंगे और बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, बट वाइल दैट इज़ हैपनिंग, जो मेरी कोर ऑडियंस है उनको पता होना चाहिए कि मैं किसी गलत नीयत से नहीं कर रहा, मैं एक लॉजिकल आदमी हूँ, लॉजिक से सोच रहा हूँ। आप भी लॉजिक से सोचेंगे तो आप भी उसी कंक्लूजन पे पहुँचेंगे जिस पे मैं पहुँचा। बट इन एन एनवायरनमेंट, इन अ टाइम जब पोलराइजेशन और इमोशंस बहुत हाई हैं, तो आई डू अंडरस्टैंड कि खप आएगी, बट अगर मैं खप की परेशानी लूँगा तो ऑथेंटिसिटी लूज़ करूँगा। और अब मैं चाहता हूँ कि इसी वैसे दिल की बात बोलिए, बिकॉज दिल जो है वो ऑथेंटिक होता है, दिमाग जो है वो थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट होता है। बट नॉनदलेस वी आर एट द 1 hour रफली मार्क एंड आई एम गोना रैप दिस अप। दिस वॉज सैयद मुजम्मिल हसन जैदी, यू आर वॉचिंग द 400th एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सीजन।